आगे सबक देखिए भाई, व इन शहीद स्नानी अन्नहु जना बि फुलान तफस्तक रहा व आखरानी अन्नहा तावतहु दुरी अलहद अनहुमा जमी अन इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह ताला وهو قول زفر رحمه الله تعالى وقال يحد الرجل خاصة بے گزشتہ سبق میں ہم نے باب الشہادت علی الزنا والرجوع عنها شروع کیا تھا. میں نے بتلایا تھا کہ صاحب ہدایہ اس باب کے اندر زنا کے اندر جو شہادت ہے جو گواہی ہے उससे मुतालिका मसाइल जिक्र करेंगे कि क्या क्या चीज गवाही कबूल करने से मान्या बनेगी, और इसी तरह अगर कोई गवाह गवाही से रुजू कर लेता है तो फिर उस सूरत में क्या हुक्म होगा. तो सबसे पहले साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि हुदूद का मसला चूंकि बड़ा नाजुक है, लिहाजा यहां पर अगर गवाही पुरानी हो जाए तो फिर गवाही कबूल नहीं की जाएगी. वजह यह कि दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद ये शख्स किसी कीने और बुग़्ज़ की वजह से अब गवाही देने आया है भाई. अलबत्ता हद कज़फ जो है उसके अंदर अगर ताखीर भी हो जाए फिर भी गवाही कबूल की जाएगी, क्योंकि हद कज़फ जो है उसमें बंदे का भी हक है. इसलिए क्योंकि किसी शख्स पर जिना की तोहमत लगाई जाए तो यह उसके लिए हार का बाइस है और उसके लिए ताने का बाइस है, तो शरीयत ने उसे हक दिया है कि वो काजी से फिर हद कज़फ का मुतालबा कर सकता है भाई. और नीज इसलिए क्योंकि वहां पर जो है दावा जरूरी है भाई, और लिहाजा यहां पर अगर गवाह देर से भी आए तो उसको महमूल किया जाएगा दावे की ताखीर पर. इस पर इश्काल हुआ कि यहां पर अगर गवाही ताखीर से आए तो उसको दावे की ताखीर पर महमूल किया जाता है. तो इसी तरह तो दावा चोरी के अंदर भी शर्त है, तो वहां पर अगर गवाही देर से आए तो आप उसे कबूल नहीं करते, हालांकि वहां पर भी ताखीर से आने वाली गवाही को दावे की ताखीर पर महमूल करना चाहिए. तो साहिब हिदाया ने उसके तीन जवाब दिए थे. एक जवाब यह दिया था कि चोरी की हद के अंदर दावा शर्त है, लेकिन यह दावा हकीकत के अंदर उस माल की वजह से शर्त करार दिया गया है, हद सरीका की वजह से नहीं. मालूम हुआ यहां जो दावा आया है वह हद सरीका की वजह से नहीं आया, लिहाजा यहां पर ताखीर होगी तो इस सूरत में गवाही कबूल नहीं की जाएगी. और दूसरा जवाब दिया था साहिब हिदाया ने कि हुकूकुल्लाह के अंदर गवाही का ताखीर से आना यह तोहमत का बाइस है, इसलिए गवाही कबूल नहीं की जाती. लेकिन इस तोहमत का हर फर्द में होना जरूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि यह कीना और दुश्मनी यह तो दिल की बात है, हमें तो पता नहीं चल सकता कि किसके दिल में कीना और दुश्मनी है और किसके दिल में कीना और दुश्मनी नहीं. तो कीना और दुश्मनी चूंकि एक अमरे बातिनी है, इंसान उस पर मुत्तले नहीं हो सकता, लिहाजा यहां पर हुक्म का मदार खालिस अल्लाह का हक होने पर कर दिया गया. किस हुक्म का मदार? कि ताखीर से आने पर गवाही कबूल नहीं की जाएगी. इस हुक्म का मदार अब उस अमरे बातिनी यानी कीने और बुगज पर है ही नहीं, बल्कि अब इसका मदार उस हद के खालिस अल्लाह का हक होने पर है. तो जो भी हद खालिस अल्लाह का हक होगी, चाहे वहां दिलों में बदगुमानी आए चाहे ना आए, हर सूरत के अंदर वहां ताखीर से गवाही आए तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा. यह इसी तरह है जैसे सफर के अंदर शरीयत ने अहकाम के अंदर नरमी कर दी कि चार रकात नमाज के बजाय अब दो रकात नमाज अदा की जाती है, और कोई सफर के अंदर रोजे न रखना चाहे तो वो बाद में रोजे रख सकता है. तो शरीयत ने ये रुख्सत दे दी, और शरीयत के इस हुक्म की बुनियाद मशक्कत पर है, क्योंकि सफर में इंसान को मशक्कत होती है, तकलीफ होती है. लेकिन मशक्कत तो एक अमरे बातनी है, हमें तो पता नहीं चल सकता कि किस शख्स को कितनी मशक्कत हुई है और किस शख्स को मशक्कत हुई है और किस शख्स को मशक्कत हुई ही नहीं भाई. तो लिहाजा वहां पर भी हुक्म का दारोमदार जो है वह सफर पर ही कर दिया गया, लिहाजा अब जब भी तीन दिन के मसाफत का सफर पाया जाएगा तो वहां सफर के अहकाम आ जाएंगे भाई. तो यहां पर भी इसी तरह है, ताखीर से आने पर गवाही का कबूल न करना, उसका दारोमदार था कीने और बुगज पर, लेकिन अब कीने और बुगज को नहीं देखा जाएगा बल्कि उस हद के खालिस अल्लाह के हक होने को देखा जाएगा. चुनाचे चोरी की हद में अगरचे दावा शर्त है और दावे की वजह से गवाहों का उजर मौजूद है, गवाहों का ताखीर से आने का उजर मौजूद है, लिहाजा अगरचे यहां पर दिलों में बदगुमानी नहीं आती लेकिन फिर भी इस बात की तरफ देखा ही नहीं जाएगा क्योंकि अब शरीयत ने इस हुक्म का मदार इस कीने पर रखा ही नहीं बल्कि खालिस अल्लाह का हक होने पर इसका मदार है। तो जो भी हद खालिस अल्लाह का हक है वहां यह हुक्म आ जाएगा। अब यहां पर कीने और बोगज वो जो इस हुक्म की इल्लत थी उसकी तरफ देखा ही नहीं जाएगा क्योंकि अब उस पर हुक्म का मदार ही नहीं है भाई। और तीसरा जवाब दिया था साहिबे हिदाया ने कि चोरी के अंदर ताखीर से गवाही आएगी तो गवाह फासिक हो चुके हैं इसलिए उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि गवाहों ने जब चोर को चोरी करते हुए देखा तो इन पर वाजिब था कि ये फौरन उस मालिक को खबर देते, तो जब इन्होंने मालिक को खबर देने में ताखीर कर दी तो ये गवाह फासिक और गुनाहगार हो गए क्योंकि मालिक को तो वैसे पता नहीं चल सकता कि मेरी चोरी पर कोई गवाह मौजूद हैं जब तक कोई उसको इत्तला नहीं देगा भाई। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने बतलाया था कि पुराना होना यानी ज्यादा वक्त का गुजरना, जिस तरह ज्यादा वक्त का गुजरना इब्तिदा के अंदर कबूल शहादत से मानिअ है हुदूद के मसले में, इसी तरह पुराना होना यह इकामत हद से भी मानिअ है भाई। अगर बात पुरानी हो गई तो फिर हद कायम नहीं की जाएगी, जैसे बात पुरानी हो जाए तो गवाही कबूल नहीं की जाती हुदूद के मसले में, इसी तरह अगर बात पुरानी हो गई तो हद कायम नहीं की जाएगी। जैसे उसकी मिसाल साहिब हिदायत ने जिक्र फरमाई कि एक शख्स था उस पर हद जारी की गई और उसे कुछ कोड़े लगे थे कि वो भाग गया और फिर उसके बाद एक दो महीने के बाद वो पकड़ा गया, तो अब बात पुरानी हो चुकी है तो लिहाजा अब हद साकित हो चुकी है, अब उसको बकिया कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। और साहिब हिदायत ने कीमती बात आपको बतलाई थी कि हुदूद के मसले में इम्ज़ा भी कजा का हिस्सा है, इम्ज़ा यानी हद को नाफिज करना यह भी कजाए काजी का हिस्सा है। तो शुरू में अव्वल गवाह आते हैं फिर काजी फैसला करता है और फिर उसके बाद हद कायम की जाती है, तो यह हद का कायम करना यह भी कजाए काजी का हिस्सा है भाई। तो लिहाजा ये इम्ज़ा जो है ये भी कज़ाए काजी का हिस्सा है, ये काजी के फैसले का हिस्सा है, लिहाजा इसके अंदर भी अगर जमाना ज्यादा गुजर जाएगा तो हद कायम नहीं की जा सकती। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया था कि कितना जमाना ज्यादा गुजर जाए तो उसको पुराना शुमार किया जाएगा, तो बतलाया था कि सही कौल के मुताबिक एक माह का वक्त गुजर जाए तो बात पुरानी हो गई लिहाजा अब हद कायम नहीं की जा सकती। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया था कि अगर चार गवाह गवाही दे दें एक शख्स के बारे में कि इसने फुलानी औरत से जिना किया है और हाल यह है कि वो फुलानी औरत वहां पर मौजूद नहीं, तो फिर भी इस शख्स पर हद जारी की जाएगी। इस पर इश्काल होता है कि यहां तो शुबा आ रहा है और शुबे की वजह से तो हद साकित हो जाती है, और शुबा यह है कि हो सकता है अगर वो औरत यहां पर मौजूद होती तो वो कह देती कि हम दोनों का निकाह हुआ है, तो यहां पर देखो शुबे का इहतमाल मौजूद है लिहाजा इस हद को साकित हो जाना चाहिए। तो साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि भाई शुबे की वजह से तो हुदूद साकित हो जाती हैं लेकिन इहतमाल शुबा की वजह से भी अगर हद को साकित करार दे दिया जाए फिर तो हद कायम करने की कोई सूरत ही ना रहेगी। वो औरत अगर यहां होती और फिर वो निकाह का दावा करती तो फिर शुबे ने आना था, और अभी तो ना वो औरत है ना उसने कोई दावा किया है तो यहां कोई शुबा नहीं है, सिर्फ शुबे का एक इहतमाल है, सिर्फ शुबे का वहम होता है और वहमी चीज का कोई एतबार नहीं, और इसी को शुबा तो शुबा कहा जाता है कि शुबा होने का शुबा है, यहां पर शुबा है तो नहीं लेकिन शुबा होने का शुबा है यानी इहतमाल है। तो याद रखो हमेशा जगह जगह किताबों के अंदर यह जिक्र आएगा कि हद जो है शुबे से साकित होती है लेकिन शुबा तो शुबा की वजह से साकित नहीं होती, तो वहां इंसान जरा परेशान हो जाता है कि शुबा तो शुबा का क्या माना, तो वो साहिब हिदाया ने बयान फरमा दिया कि शुबा है नहीं लेकिन शुबा होने का इहतमाल है, वहम है, तो उसका कोई एतबार नहीं भाई। बात समझ में आ गई। और फिर यह भी बतलाया था कि अगर गवाह गवाही दे दें कि इस शख्स ने चोरी की है और उस माल का मालिक वहां पर मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में हद साबित नहीं होगी, इसलिए क्योंकि चोरी के अंदर दावा जरूरी है, और जब मालिक वहां नहीं है तो मालूम हुआ दावा नहीं है, जब दावा नहीं है तो फिर गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी भाई। और उसके बाद साहिब हिदाय ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर गवाहों ने गवाही दी कि इस आदमी ने कैसी औरत से जिना किया है जिसे हम नहीं जानते थे, तो इस सूरत में हद साकित हो जाएगी, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो औरत जो है वो इस आदमी की बीवी हो या इसकी बांदी हो गई। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक शख्स खुद इकरार करता है कि मैंने एक औरत से जिना किया है जिसे मैं नहीं जानता था, तो फिर इस सूरत में इस पर हद जारी की जाएगी, क्योंकि किसी शख्स पर अपनी बांदी या अपनी बीवी तो मख्फी और पोशीदा नहीं रह सकती, लिहाजा इस सूरत में इस पर हद जारी की जाएगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। व इन शहीदस्तानी अन्नहु ज़ना बिफुलान तफस्तक रहा व आखरानी अन्नहा तावअतहु दुरि अलहद अन्हुमा जमीअन इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह। भाई सूरत मसला यह कि चार गवाह आए और उन्होंने एक आदमी और औरत के खिलाफ जिना की गवाही दी। अलबत्ता इनमें दो गवाह ये कहते हैं कि इस औरत ने अपनी रजामंदी के साथ ही इस आदमी के साथ जिना किया है, जबकि दो गवाह ये कहते हैं कि इस आदमी ने इस औरत को मजबूर किया था, इसके साथ जबरदस्ती जिना किया, यह औरत तैयार नहीं थी। तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं कि उस औरत से भी हद साकित हो गई और इस आदमी से भी हद साकित हो गई। वजह यह कि दो आदमी औरत की रजामंदी की गवाही दे रहे हैं और दो आदमी औरत के मुकरह और मजबूर होने की गवाही दे रहे हैं, तो दोनों का मशहूद भी ही अलग अलग हो गया। तवज्जो है, याद रखो, एक है गवाही देने वाला, उसको कहते हैं शाहिद, और जिसके खिलाफ गवाही दी जाए उसको कहते हैं मशहूदुन अलैही। मसलन दो आदमियों ने जैद के खिलाफ किसी मसले में गवाही दी तो वो दो आदमी हुए शाहिद, और वो जैद जो है वो है मशहूदुन अलैही। अला जरर और नुकसान के लिए आता है, मशहूदुन अलैही जिसके खिलाफ गवाही दी गई है, और जिस बात की गवाही दी है उसको मशहूद भी ही कहते हैं। मसलन दो आदमियों ने जैद के खिलाफ गवाही दी कि इसने अमर का 1,00,000 रुपया अदा करना है, तो ये जो मामला जिसकी उन्होंने गवाही दी है इसको मशहूद भी ही कहते हैं। तो जैद क्या हुआ, मशहूदुन अलै, और जिस चीज की गवाही दी है गवाहों ने कि इसने फलां का 1,00,000 रुपया देना है, वो है मशहूदुन भी ही भाई। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां जब दो गवाहों ने गवाही दी है कि औरत ने रजामंदी से जिना किया है, तो ये और जिना है, क्योंकि वो जिना जो रजामंदी से किया जाए वो और होता है, और दो गवाहों ने गवाही दी है कि इस औरत पर जबर किया गया था, इसके साथ जबरदस्ती जिना किया गया है, तो जबर के साथ जो जिना किया जाए वो और होता है। ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ही औरत जिना के अंदर रजामंद भी हो और उस पर जबर भी किया गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ दो गवाहों ने जिस रजामंदी वाले जिना की गवाही दी है वो और जिना है, और जिन दो गवाहों ने जबर वाले जिना की गवाही दी है वो और जिना है। तो मशहूद भी ही अलग हो गए, किसी एक मशहूद भी ही पर भी चार गवाह मौजूद नहीं, किसी एक जिना पर भी चार गवाह मौजूद नहीं, रजामंदी वाले जिना पर भी दो गवाह और जबर वाले जिना पर भी दो गवाह, तो किसी भी जिना पर चार गवाह मौजूद नहीं, शहादत का निसाब पूरा नहीं है। जब शहादत का निसाब पूरा नहीं है तो इसके जरिए हद साबित नहीं हो सकती, ना मर्द पर और ना औरत पर भाई। और नीज इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो दो गवाह जिन्होंने औरत की रजामंदी की गवाही दी है, ये दरअसल फरीके मुखालिफ बन गए उस औरत के साथ। ये क्या बन गए, फरीके मुखालिफ, और फरीके मुखालिफ की तो गवाही कबूल नहीं की जाती, लिहाजा इन दो की गवाही कल आदम हो गई, उसका कोई एतबार ही नहीं। मसलन देखो, अमर आया और उसने जैद पर दावा कर दिया कि काजी साहब जैद ने मेरा 1,00,000 रुपया देना है, तो अमर हुआ फरीके मुखालिफ। काजी ने कहा गवाह पेश करो भाई, कौन से गवाह है तुम्हारे पास। अमर ने कहा जी एक तो मैं खुद गवाह हूं। भाई आप तो फरीके मुखालिफ हैं, आप गवाह नहीं बन सकते, गवाह कोई तीसरा आदमी होना चाहिए। तो जाब्ता में यह बतलाना चाहता हूं कि जो फरीके मुखालिफ होता है वह गवाह नहीं बन सकता। तो यहां पर भी दो गवाहों ने औरत की रजामंदी के साथ जिना करने की गवाही दी है, तो गोया ये दो आदमी औरत के खिलाफ फरीके मुखालिफ बन गए, और फरीके मुखालिफ की गवाही तो कल आदम होती है, उसका एतबार ही नहीं किया जाता। जब उसका एतबार ही नहीं किया जाता तो अब सिर्फ दो गवाह रह गए, और दो गवाहों से तो जिना साबित नहीं होता। इस पर फिर इश्काल होता है कि जब ये फरीके मुखालिफ हैं, जब ये दो गवाह क्या बन गए, फरीके मुखालिफ बन गए, फिर तो इन्होंने जीना की तोहमत लगाई है, लिहाजा इन पर हद कजफ जारी होनी चाहिए। तो साहिब हिदाय आपको बतलाएंगे कि बात ऐसी ही है, ये जो दो गवाह हैं जो औरत की रजामंदी की गवाही दे रहे हैं, ये फरीके मुखालिफ बन गए और ये तोहमत लगाने वाले बन गए, और अब इन पर हद कजफ जारी होनी चाहिए। लेकिन जो वो दूसरे दो गवाह हैं जिन्होंने औरत के मुकरह होने की गवाही दी है कि इसके साथ इकराह किया गया, इसके साथ जबरदस्ती की गई, उन दो गवाहों की वजह से औरत का मुहसना होना साकित हो गया। आपने पढ़ा था कि हद कजफ उस आदमी को लगाई जाती है जो किसी मुहसन मुसलमान पर जिना की तोहमत लगाए, जो किसी मुहसन पर जिना की तोहमत लगाए। और एहसानुल कजफ आपने पढ़ा था, पांच चीजें हैं कि जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया है वो आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और जीना से पाक दामन हो। अगर उसने कभी जीना किया था और उसको हद लग चुकी है तो ये जीना से पाक दामन नहीं रहा, लिहाजा इसको अगर कोई जानी कह देगा तो अगरचे उसने बुरा लफ्ज कहा है लेकिन बहरहाल उसको हद कजफ नहीं लगाई जा सकती। तो यहां पर भी दो गवाहों ने जब औरत के मुकरह होने की गवाही दी कि औरत के साथ जबरन जीना किया गया है, तो बहरहाल औरत बेशक गुनाहगार नहीं है इस फेल के अंदर, लेकिन अब वो पाकदामन न रही, हकीकतन फेल जीना उससे सादिर हो चुका है, अगरचे उसकी मर्जी के खिलाफ है लेकिन उसका मुहसना होना साकित हो गया। तो लिहाजा वो दो गवाह जो औरत पर रजामंदी का इल्जाम लगा रहे थे उन पर हद कजफ आनी थी, लेकिन चूंकि ये दूसरे दो गवाहों की वजह से औरत का मुहसना होना खत्म हो गया, जब वो मुहसना नहीं है तो गैर मुहसना पर अगर जीना का इल्जाम लगाया जाए तो उस इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ नहीं आती, लिहाजा इसलिए इन दो से भी हद कजफ साकित हो जाएगी। तो आपके जहन में आएगा कि औरत की वजह से तो इन पर हद कजफ नहीं लग सकती लेकिन मर्द की वजह से तो हद कजफ लगनी चाहिए। तो जवाब यह कि जीना जो है वह मर्द और औरत दोनों का एक ही फेल है, जब इस एक फेल के अंदर एक फर्द यानी औरत की वजह से इनको हद कजफ नहीं लग सकती तो मर्द की वजह से भी इनको अब हद कजफ नहीं लग सकती, क्योंकि जिना एक ही फेल है जिसका वो इल्जाम लगा रहे हैं। तो जब उस फेल के एक फर्द यानी औरत की वजह से हद कजफ इनको नहीं लग सकती तो इस फेल के दूसरे फर्द यानी मर्द की वजह से भी इन गवाहों को हद कजफ अब नहीं लग सकती। बात समझ में आ गई। ये तो था इमाम साहिब का मजहब, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इस सूरत में सिर्फ मर्द को हद लगेगी, औरत को हद नहीं लगेगी, इसलिए क्योंकि चारों गवाह इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि इस मर्द ने जिना किया है। अलबत्ता दो गवाह ये कह रहे हैं कि औरत की रजामंदी नहीं थी, और जब जिना के अंदर जिना करने वाले या जिना पर कुदरत देने वाले की रजामंदी ना हो तो फिर वहां हद जारी नहीं होती। तो औरत की चूंकि रजामंदी नहीं थी लिहाजा उस पर से तो हद साकित हो गई, लेकिन चारों गवाहों ने इस बात पर तो इत्तेफाक किया है कि इस आदमी ने जिना किया है तो लिहाजा इस आदमी पर हद जारी होगी। ये साहिबैन का मजहब है। बात समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर कहते हैं वह इन शहीद स्नानी अन्नहू जना भी फुलाना था, और अगर दो आदमियों ने गवाही दी कि इस आदमी ने फुलानी औरत से जिना किया है, मैंने आपको बतलाया था कि यह फुलाना था, यह गैर मुंसरिफ है भाई। तो कहते हैं वह इन शहीद स्नानी अन्नहू जना भी फुलाना था, और अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस शख्स ने फुलानी औरत से जिना किया है, फस्ता करा हा हा तो उससे जबरदस्ती की है, उसको मजबूर किया है यानी जबरन उसके साथ जिना किया है, वह आखरानी अन्नहा तावात हु और दो और गवाहों ने गवाही दी कि अन्नहा तावात हु कि इस औरत ने उसका साथ दिया है, उस आदमी का साथ दिया है, यानी रजामंदी से उसको अपने ऊपर कुदरत दी है। तो दुरी अल हद अनहुमा जमीअ इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो इमाम साहब के नजदीक दोनों से हद जो है वो साकित हो जाएगी। वह हुवा कौल जुफर रहिमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम जुफर रहिमहुल्लाह का भी। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, युहद्दुर रजुल खासतन, कि उस आदमी को खास तौर पर हद लगाई जाएगी, यानी सिर्फ उस आदमी ही को हद लगाई जाएगी, औरत को हद नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि औरत की रजामंदी पर चार गवाह मौजूद नहीं है भाई। तो कहते हैं वकाला, साहिबैन फरमाते हैं, युहद्दुर रजुल खासतन, के खास तौर पर उस आदमी को हद लगाई जाएगी। लित्तिफाकहिमा अलल मूजिब, लित्तिफाकहिमा, ये हुमा जमीर राजे है गवाहों को, और गवाह तो हैं चार, लेकिन दो गवाह गवाही दे रहे हैं औरत की रजामंदी की, और दो गवाह गवाही दे रहे हैं औरत पर जबर की। तो लिहाजा गोया गवाहों के दो ग्रोह बन गए, दो फरीक बन गए। तो यह हुमा जमीर उन दोनों फरीकों को राजे है। लित्तिफाक ही मा, इस वजह से कि गवाहों के दोनों फरीक इत्तिफाक कर रहे हैं, अलल मूजिबी, उस चीज पर जो हद को वाजिब करने वाली है। और हद को वाजिब करने वाली चीज क्या है? इस आदमी का जिना। हद को वाजिब करने वाली चीज क्या है? इस आदमी का जिना। तो गवाहों के दोनों फरीकों का इत्तेफाक है कि इस आदमी ने जिना किया है। अलबत्ता गवाहों का एक फरीक इस आदमी का एक जायद जुर्म भी बता रहा है कि इसने इकराह भी किया, जिना भी किया और इकराह भी किया। तो गवाहों का एक ग्रोह इस आदमी के सिर्फ जिना की गवाही दे रहा है, और गवाहों का दूसरा ग्रोह जो है इस आदमी के जिना के साथ साथ इसके इकराह के जुर्म की भी गवाही दे रहा है भाई। तो कहते हैं युहद्दुर रजुल खासतन, साहिबैन फरमाते हैं उस आदमी को खास तौर पर हद लगाई जाएगी। लित्तिफाकहिमा अलल मूजिबी, इस वजह से कि गवाहों के दोनों फरीकों का इत्तिफाक है। अलल मूजिबी, उस चीज पर जो हद को वाजिब करने वाली है, और हद को वाजिब करने वाली क्या चीज है? उस आदमी का जिना है। तो मूजिब से मुराद वो चीज है जो हद को वाजिब करने वाली है भाई। इस वजह से कि दोनों फरीकों का इत्तेफाक है हद को वाजिब करने वाली चीज पर। व तफर्रुदी अहदिहिमा बिज़ियादती जिनायतिन, और इन दोनों फरीकों में से एक फरीक जो है वो अकेला है, बिज़ियादती जिनायतिन, एक ज़ाइद जिनायत के साथ। गवाहों के दोनों फरीकों में से एक फरीक एक ज़ाइद जुर्म की भी गवाही दे रहा है, उस ज़ाइद जुर्म की गवाही देने में एक फरीक अकेला है भाई। तो कहते हैं वतफर्रुदी अहदिहिमा बिज़ियादती जिनायतिन, और इस वजह से कि गवाहों के दोनों फरीकों में से एक फरीक जो है वो एक ज़ाइद जुर्म के बारे में अकेला है। वह हुवल इकराह, और वो जुर्म क्या है? इकराह, इस मर्द का जबरदस्ती करना है। तो लिहाजा मर्द पर हद आएगी। बिखिलाफी जानिबिहा, बखिलाफ औरत की जानिब में। लिअन्न तवाइयतहा शर्तु तहक्कुकिल मूजिबी फी हक़िहा, भाई देखिए औरत पर हद नहीं आएगी, साहिबैन फरमाते हैं, क्योंकि औरत पर हद तब आती अगर वो अपनी रजामंदी से जिना करती, और यहां पर तो दो गवाहों से उसकी रजामंदी साबित हो रही है, जबकि बाकी दो से उसकी रजामंदी साबित नहीं हो रही। अगर चारों गवाहों से औरत की रजामंदी साबित होती तो फिर औरत पर हद ने आना था, लेकिन अब तो चार गवाह औरत की रजामंदी पर मौजूद नहीं है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ जानिबिहा, बखिलाफ उस औरत की जानिब में। लिअन्न तवाइयतहा शर्तु तहक्कुकिल मूजिबी फी हक़िहा, तवज्जो से भाई, यहां जरा तर्जमा मुश्किल है। लिअन्न तवाइयतहा, इसलिए क्योंकि औरत का साथ देना यानी औरत की जो रजामंदी है, शर्तु तहक्कुकिल मूजिबी, मूजिब हद को वाजिब करने वाली चीज, और वो क्या है? औरत का जिना पर रजामंदी से कुदरत देना। शर्त तहक्कुकिल मूजिबी, तर्जमा आखिर से होगा, वो चीज जो हद को वाजिब करने वाली है, फी हकीहा, वो चीज जो हद को वाजिब करने वाली है औरत के हक में, उसका पाया जाना शर्त है। वो चीज जो औरत के हक में हद को वाजिब करने वाली है उसका पाया जाना शर्त है, और वो औरत की रजामंदी है। तो औरत की रजामंदी शर्त है, फिर ही औरत के हक में हद वाजिब होगी। तो कहते हैं लिअन्ना तबाइयताहा, इसलिए क्योंकि औरत का साथ देना, औरत की जो रजामंदी है, शर्त तहक्कुकिल मूजिबी फी हकीहा, वो औरत के हक में हद को वाजिब करने वाली चीज के पाए जाने के लिए शर्त है। वलम यसबुत, और हाल यह है कि यह शर्त साबित नहीं, यानी औरत की रजामंदी साबित नहीं है। लिख्तिलाफ ही मां, इस वजह से कि गवाहों के दोनों फरीक आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। व लहू, अब इमाम साहब की दलील आ गई। व लहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु इख्तलफल मशहूदु अलैहि, कि मशहूद अलैह यहां पर मुख्तलिफ हो गया। याद रखो यहां मशहूद अलैह से मुराद मशहूद भी ही है। भाई भाई देखिए, मैंने आपको बतलाया, एक है गवाही देने वाले, वो हैं शाहिद, और दूसरा है जिसके खिलाफ गवाही दी है वो है मशहूदुन अलैही, और जिस चीज की गवाही दी है यानी जिना की गवाही दी है तो वो है मशहूद भी ही। तो यहां पर मशहूद भी ही मुख्तलिफ हो गया है। दो गवाह गवाही दे रहे हैं जिना बिल रजा की, और दो गवाह गवाही दे रहे हैं जिना बिल इकराह की। भाई, और जिना बिल रजा और होता है और जिना बिल इकराह और होता है, तो दोनों गवाहों के जो फरीक हैं इनका मशहूद भी ही अलग अलग है। एक का मशहूद भी ही जिना बिल रजा है और एक का मशहूद भी ही जिना बिल इकराह है। भाई, तो किसी एक में भी शहादत का निसाब पूरा नहीं, यानी चार गवाह पूरे नहीं हैं। तो इख्तिलाफ किस में है? मशहूद भी ही में। लेकिन साहिबे हिदाया फरमा रहे हैं, व लहू के इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु इख्तलफल मशहूद अलैहि, कि मशहूद अलैह मुख्तलिफ है। मशहूद अलैह, भाई मशहूद अलैह तो वो आदमी है जिसने जिना किया है, वो आदमी है और वो औरत है भाई, और वो तो मुख्तलिफ नहीं है, एक ही आदमी और औरत के बारे में गवाही दे रहे हैं। भाई, तो यहां पर शारहीन फरमाते हैं कि मशहूद अलैह से मुराद मशहूद भी ही है, यानी यहां अला बमाने बाके है। अल मशहूद अलैही, ये किस माना में है? अल मशहूद बिही के माना में है, और अरबी जुबान में अला बमाने बाके आम इस्तेमाल होता रहता है। बात समझ में आ गई? तो साहिबे हिदाया जो बहुत बड़े अदीब भी हैं, वो बतौर तफन्नुन के यहां पर बाकी जगह आला ले आए, क्योंकि बात वाजह थी भाई कि मशहूद भी ही मुख्तलिफ हुआ है, मशहूद आले मुख्तलिफ नहीं हुआ। भाई, तो कहते हैं वलहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु इख्तलफल मशहूद अलैहि, कि मशहूद बिही जो है वो मुख्तलिफ हो गया है। लिअन्न ज़िना फ़िअलुन वाहिदुन यकूमु बिहिमा, इसलिए क्योंकि ज़िना एक ही फेल है जो दोनों के साथ कायम है, एक ही ज़िना है जो दोनों के साथ कायम है। ऐसा नहीं कि मर्द का ज़िना कोई और है, औरत का ज़िना कोई और है, तवज्जो है, एक ही फेले जिना है जो दोनों के साथ कायम है, और उसी के बारे में दो गवाह कह रहे हैं जी रजामंदी से हुआ यह जिना, और दो कह रहे हैं जबरन हुआ यह जिना, तो मालूम हुआ मशहूद भी ही मुख्तलिफ हो गया। तो कहते हैं अन्न जिना फ़िअलुन वाहिदुन यकूमु बिहिमा, इसलिए क्योंकि ये जिना जो है ये तो एक ही फेल है जो दोनों के साथ कायम है। वली अन्न शाहिदै तवाइयति सारा काज़िफैन लहुमा, एक वजह तो जिक्र कर दी। इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि किसी एक को भी हद नहीं लगाई जाएगी। क्यों नहीं लगाई जाएगी? क्योंकि किसी भी जिना पर शहादत का निसाब पूरा नहीं, ना जिना बिल रजा पर और ना जिना बिल इकराह पर, किसी पर भी शहादत का निसाब पूरा नहीं। और दूसरा जवाब दे रहे हैं, दूसरा जवाब कि भाई ये जो जिना बिल रजा की जो गवाही दे रहे हैं, ये दरअसल इन दोनों पर जिना की तोहमत लगा रहे हैं, इन दोनों पर जिना की तोहमत लगा रहे हैं, तो इन पर हद कजफ आनी चाहिए इन दोनों पर। लेकिन चूंकि दो और गवाह जो हैं वो जिना बिल इकरा की गवाही दे रहे हैं, तो उसकी वजह से औरत का मोहसना होना साकित हो गया। अब वो औरत मोहसना ना रही, तो इस वजह से जब वो मोहसना नहीं है तो उस पर जिना का इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ भी साबित नहीं होगी। तो मालूम हुआ ये जो जिना बिल रजा का इल्जाम लगाने वाले गवाह थे, इन पर हद कजफ आ रही थी, लेकिन जिना बिल इकरा के गवाहों की वजह से इनसे हद कजफ साकित हो गई। बात समझ में आ गई? और जब औरत की वजह से हद कजफ साकित हो गई, ये जो जिना बिल रजा की गवाही दे रहे थे इन पर हद कजफ आनी थी, लेकिन जिना बिल इकराह की वजह से औरत का मोहसना होना साकित, जब औरत का मुहसना होना साकित हुआ तो ये जो जीना बिर रजा की गवाही देने वाले हैं इनसे हद कजफ साकित हो गई, और जब औरत की वजह से इनसे हद कजफ साकित हो रही है तो मर्द की वजह से भी अब हद कजफ इन पर नहीं आएगी, क्योंकि जीना जो है मर्द और औरत का एक ही फेल था। तो जब उस एक फेल के एक फर्द यानी औरत की वजह से हद कजफ नहीं आ सकती इन पर, तो दूसरे फर्द यानी मर्द की वजह से भी इन पर हद कजफ नहीं आ सकती। तो कहते हैं वली अन्न शाहिदई तवायती सारा काजिफैनी लहुमा, वली अन्न शाहिदई तवायती, असल में था शाहिदैनी, दो गवाह हैं, नून इजाफत की वजह से गिर गया। तो कहते हैं वली अन्न शाहिदई तवायती, और इसलिए क्योंकि साथ देने के जो दो गवाह हैं यानी जो जीना बिर रजा की गवाही दे रहे हैं भाई, तो कहते हैं वली अन्न शाहिदई तवायती, इसलिए क्योंकि औरत के साथ देने के जो दो गवाह हैं, सारा काजिफैनी लहुमा, ये दोनों उस मर्द और औरत पर तोहमत लगाने वाले हो गए। वह इन नमा यस्कुतुल हद अनहुमा, और इन दोनों से जो हद साकित हुई है भी शहादती शाहिदिल इकराही, वो इकराह के दो गवाहों की गवाही से है भाई, इकराह के दो गवाहों की गवाही की वजह से इनसे हद साकित हो गई, वरना इन पर हद आ जानी थी भाई। क्यों इकराह के गवाहों की वजह से हद कजफ क्यों साकित हुई? कहते हैं लिअन्ना जीनाहा मुकराहतन, इसलिए क्योंकि इस औरत का जीना करना मुकराह होने की हालत में, युस्कितु एहसानहा, ये इसके मोहसना होने को साकित कर देता है। तो जब औरत मोहसना नहीं तो अब कजफ वालों पर हद भी नहीं आएगी, और जब औरत की वजह से हद नहीं आ सकती तो अब मर्द की वजह से भी हद नहीं आएगी, क्योंकि जिना एक ही फेल है दोनों का भाई। फसारा खस्मैनी फी ज़ालिका, तो ये दोनों फरीके मुखालिफ बन गए इस बात जिना के अंदर। ये दोनों ये जो गवाह हैं जिना बिर रजा के, ये तो काजिफ बन गए थे, इल्जाम लगाने वाले बन गए थे, और इन पर हद कजफ आ रही थी, लेकिन दूसरे दो गवाहों की वजह से इनसे हद कजफ साकित हो गई। तो ये तोहमत लगाने वाले हुए तो ये फरीके मुखालिफ बन गए, और फरीके मुखालिफ की तो गवाही कबूल नहीं की जाती। तो ये माना है फसारा खस्मैनी फी ज़ालिका, तो ये दोनों गवाह जो हैं ये फरीके मुखालिफ बन गए उस जिना के साबित करने में, लिहाजा इनकी गवाही कल आदम है, उसको शुमार ही नहीं करेंगे। तो ये कल आदम हो गए, इनकी गवाही का एतबार ही नहीं है। तवज्जो है, वरना इश्काल होता था ना, चलो औरत के बारे में तो दो गवाह इकराह की बात कर रहे हैं, लेकिन मर्द के बारे में तो चारों जिना की ही बात कर रहे हैं कि इस मर्द ने जिना किया है। तो बतलाया कि इनमें से दो जो हैं वो तोहमत लगाने वाले हैं, वो फरीके मुखालिफ बन गए। जब फरीके मुखालिफ बन गए तो उनकी गवाही का कोई एतबार ही नहीं, जब उन दो की गवाही का एतबार नहीं तो मर्द के बारे में भी सिर्फ दो गवाह हैं, और उससे तो मर्द पर भी हद साबित नहीं हो सकती। तो ये माना है फसारा खस्मैनी फी ज़ालिका, तो ये दोनों गवाह जो हैं जो जिना बिर रजा पर गवाही दे रहे थे ये फरीके मुखालिफ बन गए फी ज़ालिका उस जिना के साबित करने में। आगे देखिए, व इन शहीद स्नानी अन्नहू दना बिम्र अतिम बिलकूफती व आखरानी अन्नहू जना बिहा बिल बसरती दुरी अलहद अनहू मा। सूरत मसला ये कि एक आदमी के जिना पर चार गवाह गवाही देने आए, दो गवाहों ने कहा कि इसने कूफा के अंदर फलानी औरत से जिना किया है, दूसरे दो गवाहों ने भी यही कहा कि इस आदमी ने इसी औरत के साथ जिना किया है, अलबत्ता उन्होंने बसरा जिक्र किया कि इसने बसरा में इस औरत से जिना किया। तो अब इस सूरत में भी दोनों में से किसी पर भी हद नहीं आएगी, क्योंकि जब जगह मुख्तलिफ हो गई तो मालूम हुआ यह जिना अलग अलग है। जब जिना अलग अलग है तो हर जिना पर दो ही गवाह हैं, चार नहीं हैं। इस पर फिर इश्काल होता है कि हर जिना पर जब दो गवाह हैं तो फिर तो इन सारों पर हद कजफ आनी चाहिए। तो जवाब यह कि हां, इन पर हद कजफ आनी चाहिए, लेकिन यहां चूंकि इन गवाहों का गुमान यह है कि हम एक ही जिना पर गवाही दे रहे हैं, मर्द भी वही है औरत भी वही है जिना भी वही है, सिर्फ जगह का फर्क आ रहा है, तो इनका ख्याल है कि हम चारों तो एक ही जिना पर गवाही दे रहे हैं, तो इनके इस गुमान की वजह से शुबा आ गया और उसकी वजह से हद साकित हो गई। अब इन गवाहों को हद कजफ नहीं लगाई जाएगी। तो कहते हैं वह इन शहीद स्नानी, और अगर दो गवाहों ने गवाही दी अन्नहू जना भी मरातिम बिलकूफती कि इस शख्स ने जिना किया है एक औरत से कूफा के अंदर, वह आखरानी और दूसरे दो गवाहों ने गवाही दी कि अन्नहू जना बिहा बिल बसरती कि इसने उस औरत के साथ जिना किया है बसरा में, दुरी अल हद दुआन हुमा तो उन दोनों से हद साकित हो जाएगी यानी ना मर्द पर हद आएगी ना औरत पर, ले अनल मशहूद अभी ही फ़ेल जिना इसलिए क्योंकि वो चीज जिसकी गवाही दी गई है वो फ़ेल जिना है, मशहूद भी ही जिस चीज की गवाही दी जाए। कहते हैं लिअन्नल मशहूद भी ही फ़ेल ज़िना इसलिए क्योंकि मशहूद भी ही फ़ेल ज़िना है, वक़द इख्तलफ़ बिख्तिलाफ़िल मकानी और वो जिना मुख्तलिफ हो गया जगह के बदलने से, एक ही जिना दो जगह पर नहीं हो सकता तो जगह अलग है मालूम जिना भी अलग है। तो कहते हैं वक़द इख्तलफ़ बिख्तिलाफ़िल मकानी और ये फ़ेल जिना मुख्तलिफ हो गया जगहों के बदलने से, यूं कहें ये मशहूद भी ही मुख्तलिफ हो गया जगह के मुख्तलिफ होने से तो मशहूद भी ही अलग अलग हुए, वलम यतिम अला कुल्ली वाहिदिन मिन्हुमा निसाबु शहादती और पूरा नहीं है दोनों में से किसी एक पर भी शहादत का निसाब। दोनों जिना जो हैं, एक जिना बिल बसरा है एक जिना बिल कूफा है, दोनों में से किसी एक पर भी निसाबे शहादत पूरा नहीं है, किसी पर भी चार गवाह नहीं है। तो कहते हैं वलम यतिम माला कुल्ल वाहिद मिन्हुमा निसाबु शहादती और पूरा नहीं है दोनों में से किसी एक पर भी शहादत का निसाब, वला युहद्दु शुहूद तो यहां इश्काल होता है फिर गवाहों को हद लगनी चाहिए हद कज़्फ, अब उसकी वजह बयान कर रहे हैं। कहते हैं वला युहद्दु शुहूद और गवाहों को हद कज़्फ नहीं लगाई जाएगी, खिलाफन लिज़ुफर रहमहुल्लाह बखिलाफ इमाम जुफर के, इमाम जुफर फरमाते हैं गवाहों को हद लगाई जाएगी उनको हद कज़्फ लगाएंगे भाई, सिर्फ यहां इख्तिलाफ जिक्र किया आगे दलील हमारी जिक्र हो रही है। तो कहते हैं गवाहों को हद नहीं लगाई जाएगी खिलाफन लिज़ुफर रहमहुल्लाह बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, लिशुभति लितिहाद यह हमारी दलील है कि गवाहों को हद नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, लिशुभति इत्तेहादी इत्तेहाद के शुबे की वजह से, इत्तेहाद का माना है एक होना, एक होना तवज्जो है भाई, दोनों गवाहों का मशहूद भी ही अलग अलग है, एक जिना बिल बसरा है एक जिना बिल कूफा है तो दोनों का मशहूद भी ही अलग अलग है लेकिन एक होने का शुबा होता है
जी।
एक होने का शुबा होता है, दोनों गवाहों का यह गुमान है कि हम तो एक ही जिना के बारे में गवाही दे रहे हैं, मर्द भी वही है औरत भी वही है, फेले जिना भी इन्हीं के दरमियान हुआ है, सिर्फ जगह का इख्तिलाफ आ गया गवाहों के दरमियान, तो यहां पर मशहूद भी ही के एक होने का शुबा होता है, यह माना है लिशुभति इत्तेहादी मशहूद भी ही के एक होने के शुबा की वजह से, नज़रन इल इत्तेहाद सूरति वल मरअति भाई एक होने का शुबा किस एतबार से होता है, कहते हैं नज़रन इल इत्तेहाद सूरति वल मरअति नजर करते हुए सूरत और औरत के एक होने की तरफ, इत्तेहाद का क्या माना एक होना, नज़रन नजर करते हुए इल इत्तेहाद सूरति वल मरअति सूरत और औरत के एक होने की तरफ नजर करते हुए कि दोनों एक ही औरत के बयान कर रहे हैं और दोनों एक ही मर्द को बयान कर रहे हैं तो लिहाजा सूरतन इन गवाहों का क्या गुमान है कि हम एक ही जिना की गवाही दे रहे हैं तो सूरतन भी इत्तेहाद आया औरत के अंदर भी इत्तेहाद आया लिहाजा मशहूद भी ही के एक होने का शुबा आ गया और शुबे की वजह से तो हद साकित हो जाती है लिहाजा इसलिए इन गवाहों पर हद कज़फ नहीं आएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए कहते हैं वला युहद्दु शुहूद खिलाफन लिज़ुफर रहमहुल्लाह और इमाम जुफर के बरखिलाफ गवाहों को हद नहीं लगाई जाएगी लिशुभति इत्तेहादी मशहूद भी के एक होने के शुबे की वजह से, नजरन इल इत्तेहाद सूरति वल मरअति नजर करते हुए सूरत और औरत के एक होने की तरफ कि सूरत भी एक है और औरत भी एक है भाई। आगे देखिए व इन इख्तलफू फी बैतिन वाहिदिन हुद्दर रजुलु वल मरअतु सूरत है मसला ये कि चार गवाहों ने गवाही दी एक मर्द और औरत के बारे में कि इन्होंने जिना किया है और एक ही जगह एक ही कमरा बयान किया लेकिन दो गवाह कहते हैं कि इसने कमरे के फला हिस्से में जिना किया है और दूसरे दो गवाह कहते हैं कि इसने कमरे के फला हिस्से में जिना किया है तो अब एक ही कमरे के अंदर जगह मुख्तलिफ बयान हो रही हैं भाई। तो फिर क्या इस सूरत में हद जारी की जाएगी? कहते हैं हां, इस सूरत में मर्द और औरत को हद लगाई जाएगी। तो सवाल पैदा होता, भाई जगह मुख्तलिफ हैं। कहते हैं भाई हो सकता है जिना की इब्तिदा उन्होंने एक जगह पर की है और जिना की इंतहा दूसरी जगह पर की हो। तो पहले देखने वालों ने इब्तिदाई मकाम को देखा, उन्होंने कहा इन्होंने यहां जिना किया है, और बाद वालों ने आखिरी हिस्से में जिना करते हुए देखा, उन्होंने कहा यहां जिना किया है। तो कहते हैं वह इन इख्तलाफूफी बैतिन वाहिदिन, और अगर गवाहों ने इख्तिलाफ किया एक ही कमरे के अंदर, खुद दर रजुलवल मर अतु, तो फिर मर्द और औरत को हद लगाई जाएगी। माना हो अयशदा जी, साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं इस कौल की जो मतन में आया कि गवाहों ने एक ही कमरे के अंदर इख्तिलाफ किया। एक ही कमरे के अंदर इख्तिलाफ करने का क्या माना? तो अब बतला रहे हैं माना हूं कि इस कॉल का माना यह है कि यशहदा कुल्लुस्नैनि अला ज़िना फी ज़ावियतिन, कि गवाही दी है हर दो ने जिना पर, फी ज़ावियतिन एक कोने में। ज़ाविया कहते हैं कमरे का कोना। तो दो ने गवाही दी है कि इस कोने में जिना किया, और दो ने गवाही दी है कमरे के दूसरे कोने में जिना किया। तो कहते हैं माना हूं, इस कलाम का माना यह है कि यशहदा कुल्लुस्नैनि अला ज़िना फी ज़ावियतिन, कि हर दो ने गवाही दी है जिना पर, फी ज़ावियतिन एक कोने में। वहां इस्तेहसानुन, और यह इस्तेहसान है यानी इस्तेहसानन हद लगाई जाएगी। कियास का तो तकाजा यह है हद न लगाई जाए, इसलिए क्योंकि जब जगह मुख्तलिफ हो जाए तो जिना मुख्तलिफ हो जाता है, मशहूद भी ही मुख्तलिफ हो जाता है। तो कहते हैं वहाज इस्तेहसानुन, और यह हद जो लगाई जाएगी यह बतौर इस्तेहसान के है। वल कियास अल्ला युहद्दा, और कियास तो यह तकाजा करता है कि हद न लगाई जाए। लिख्तिलाफ इल मकानी हकीकतन, इसलिए क्योंकि जगह हकीकतन मुख्तलिफ है। दो गवाह एक जगह बयान कर रहे हैं और दो गवाह दूसरी जगह, तो हकीकतन जगह मुख्तलिफ है। वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्न तौफीक मुमकिन, कि यहां पर तौफीक मुमकिन है। दोनों कॉलों में तत्बीक देना, उनको एक दूसरे के मुआफिक करना मुमकिन है, जैसे मैंने बयान कर दिया। दोनों गवाहों के अकवाल में तत्बीक दे दी जाएगी, किस तरह कि जिना की इब्तिदा हुई एक कोने में और इंतहा हुई है दूसरे कोने में। तो दो गवाहों ने इब्तिदा को देखा और दो गवाहों ने इंतहा को देखा, तो इब्तिदा वाले भी सही गवाही दे रहे हैं और इंतहा वाले भी सही गवाही दे रहे हैं एक ही फेले जिना पर। भाई तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्न तौफीक मुमकिन, उनके यहां पर इनके कौलों के अंदर तत्बीक और तौफीक मुमकिन है। तत्बीक और तौफीक का माना है दो बातों को एक दूसरे के मुआफिक बनाना। तो यहां पर भी दोनों के कौल बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन हम उनको एक दूसरे के मुआफिक बना देते हैं। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्न तौफीक मुमकिन, उनके दोनों कौलों के दरमियान मुआफकत मुमकिन है। बियन यकून इब्तिदा उल फ़िअल फ़ी ज़ावियतिन, बाईं सूरत के इब्तिदाए फेले जिना जो है वो एक कोने में हो। वल इंतहा उफी ज़ावियतिन उखरा, और फेले जिना की इंतहा दूसरे कोने में हो। बिल इज़तिराबी, हरकत की वजह से। इज़तिराब याद रखो, साहिब हिदाया को कहना यह चाहिए था कि इब्तिदा फेल की एक कोने में है और इंतहा दूसरे कोने में है। बिल हरकती, हरकत करने की वजह से। इब्तिदा जिना एक कोने में की और फिर हरकत करते हुए दूसरे कोने में आ गए, लेकिन साहिब हिदाया इनकी फसीह और बलीग इबारात चल रही हैं, उन्होंने इस हरकत को इज़तिराब के साथ बयान फरमाया, यानी इशारा कर दिया कि ये जो हरकत है ये भी बेचैनी वाली हरकत है, क्योंकि गुनाह करते हुए इंसान बे इंतहा बेचैन होता है, उसे खौफ होता है। भाई तो ये माना है कि वो एक कोने में इब्तिदा की और दूसरे कोने में इंतहा की, बिल इज़तिराब भी बेचैनी और हरकत की वजह से। औली अन अल वाकया, तत्बीक की दूसरी सूरत बयान कर रहे हैं। एक सूरत तो क्या थी, इब्तिदा एक कोने में किया और इंतहा दूसरे कोने में। दूसरी सूरत यह है कि कमरा छोटा है और ये दोनों मसलन वस्त में जिना कर रहे हैं, लेकिन दो गवाह एक तरफ से देख रहे हैं, तो कमरा चूंकि छोटा है तो उनको अपने करीब लगे, उन्होंने अपने करीब वाला किनारा बयान किया। और दो गवाह दूसरी तरफ से देख रहे हैं, उनको भी कमरा छोटा सा है और ये वस्त में है, तो उनको अपने करीब ही लगे, तो उन्होंने अपने करीब वाला किनारा बयान किया। और ये उसी सूरत में होगा जब कमरा छोटा हो, अगर कमरा बड़ा है फिर ये तौफीक यहां नहीं चल सकती। हां वो हरकत वाली तत्बीक तो चल सकती है, लेकिन ये जो बयान के अंदर अपने करीब समझना, ये तत्बीक वहां जारी नहीं हो सकती। कहते हैं औली अन अल वाकिया फी वस्तिल बैती, या इसलिए क्योंकि वो फेले जिना जो वाके हुआ कमरे के वस्त में। फयहसिबुहु मन फिल मुकद्दमी, फिल मुकद्दमी फयहसिबुहु, तो उसको गुमान करता है, मन फिल मुकद्दमी, वो गवाह जो मुकद्दमे कमरे के अंदर है, जो कमरे के अगले हिस्से में है, वो इसको गुमान करते हैं, फिल मुकद्दमी, कि ये फेल कहां हो रहा है, कमरे के मुकद्दम हिस्से में, यानी हमारे करीब। वह मन फिल मुआखरी, फिल मुआखरी, और वो गवाह जो कमरे के आखिरी हिस्से में है, वो इसको गुमान करते हैं कि ये जिना मुआखर हिस्से में हुआ है। फयशहदु बिहसबि मा इंदहु, तो हर एक गवाही देता है उसी के मुताबिक जो उसके नजदीक साबित है। भाई आगे देखिए, व इन शहीद अरबातुन अन्नहु जना बिमरातिम बिन नुखैलति इंद तुलुई शम्सी, व अरबातुन अन्नहु जना बिहा इंद तुलुई शम्सी बिदैरी हिंदिन दूरी अलहद अनहुम जमीआ। सूरत मसला ये कि चार गवाहों ने एक मर्द और औरत के बारे में गवाही दी कि इन्होंने नुखैला मकाम में तुलुआ आफ्ताब के वक्त जिना किया है, हमने देखा है। और चार ही और आदमियों ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत के साथ, इस औरत के साथ दर हिंद मकाम के अंदर जो है जिना किया है और हमने देखा है। तो अब जगह मुख्तलिफ हैं लेकिन हर एक पर चार गवाह तो पूरे हैं, अब तो हद साबित होनी चाहिए। कहते हैं नहीं, हद अब भी साबित नहीं होगी। वजह यह है कि एक ही वक्त जिक्र कर रहे हैं और एक ही वक्त के अंदर एक आदमी एक जगह हो सकता है, दोनों जगह नहीं हो सकता। लिहाजा इन दो गवाहों की जो गुरोह हैं, इनमें से एक तो यकीनन झूठा है, एक यकीनन झूठा है, लेकिन पता नहीं कौन सा झूठा है। तो दोनों के अंदर झूठा होने का शुबा आ गया, तो इनकी वजह से हद साबित नहीं होगी, क्योंकि हद तो अदना शुबे से भी साकित हो जाती है। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है, फिर इन पर हद कजफ आनी चाहिए जब हद साबित नहीं। तो जवाब यह कि नहीं, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक सच्चा हो, तो दोनों के बारे में सच्चा होने का भी शुबा होता है, लिहाजा हद कजफ भी इन पर साबित नहीं। तो कहते हैं वह इन शहीदा अरबातुन, और अगर चार गवाहों ने गवाही दी, अन्नहु जना बिमरातिम बिन नुखैलती, कि इस आदमी ने जिना किया है एक औरत के साथ नुखैला मकाम में, इंदा तुलुई शम्सी, सूरज तुलु होते वक्त। नुखैला ये मकाम है कूफा के करीब। भाई तो वक्त भी देखो जिक्र कर दिया कि तुलुई शम्स, यानी एक ही वक्त है। भाई तवज्जो है, अगर वक्त अलग अलग बयान करते हैं फिर तो मुमकिन है भाई, एक वक्त में एक जगह जिना किया, दूसरे वक्त में दूसरी जगह। यहां पर एक ही वक्त जिक्र कर रहे हैं और जगह अलग अलग हैं। तो चार ने गवाही दी कि इसने कौरा से जिना किया है नुखैला मकाम में, सूरज तुलू होते वक्त। वह अरबातुन अन्नहु जना बिहा इंदा तुलुई शम्सी, और चार ने यह गवाही दी कि इसने जिना किया है सूरज तुलू होते वक्त, बिदैरी हिंदिन, दैर हिंद के अंदर। दैर हिंद ये कोई जगह है, मशहूर जगह कूफा के करीब। भाई इसी तरह नुखैला ये भी कूफा के करीब कोई जगह है, लेकिन अलग अलग जगह हैं। वैसे याद रखो, दैर जो है, दैर, दैर हिंद भाई, अरबी जुबान में दैर कहते हैं राहिब खाना, जहां पर राहिब रहते हैं। आप जानते हैं कि ईसाई जो है वो अल्लाह की इबादत के लिए लोगों से कट कर, लोगों से जुदा होकर जंगलों में अपनी छोटी थोड़ी सी जगह बनाकर वहां रहते थे और हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। इनको राहिब कहा जाता था, जो सारे लोगों से कट कर अलग होकर अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं शब रोज, इनको राहिब कहा जाता था। भाई तो ये जो राहिबों की जगह होती उसको दैर कहते, क्या कहते हैं, दैर। और फिर ये हिंद की तरफ इजाफत हो रही है, दैर हिंद, हिंद का दैर, हिंद का, हिंद का दैर, यानी दैर का माना कर लो राहिब खाना या उन राहिबों की खानका, दैर हिंद, हिंद की खानका। तो ये अरबों के अंदर कहते हैं तीन जगहें थी जो इस नाम से मशहूर थी, तीन जगहें थी जो राहिबों की खानका के एतबार से कदीम जमाने से मशहूर थी। तो उनमें से एक जो है ये कूफा के करीब थी भाई, तो मशहूर जगह थी, इसलिए साहिब हिदाया ने भी इसको जिक्र फरमाया। भाई तो कहते हैं वह अरबातुन अन्नहु जना बिहा इंदा तुलुई शम्सी बिदैरी हिंदिन, और चार ने इस बात पर गवाही दी कि इसने इस औरत के साथ जिना किया है सूरज तुलू होते वक्त, दैर हिंद मकाम में, दूरी अलहद अनहुम जमीआ, तो हद जो है हद साकित हो जाएगी, अनहुम जमीआ, उन सब से, यानी न उस मर्द और औरत पर हद आएगी और न गवाही देने वालों पर हद आएगी, सबसे हद साकित हो जाएगी। अम्मा अनहुमा, तो मर्द और औरत से हद साकित होगी वो इसलिए, फली अन्ना तयक्कन्ना बिकज़्बि अहदिल फरीकैन मिन गैरि ऐनिन, इसलिए क्योंकि हमें यकीन है कि गवाहों के दोनों फरीकों में से एक तो झूठ बोल रहा है यकीनी तौर पर, लेकिन कौन सा गुरोह झूठ बोल रहा है हमें पता नहीं। तो एक तो झूठा है यकीनी तौर पर, तो मालूम हुआ दोनों के बारे में झूठा होने का गुमान आ गया, शक आ गया, तो उसकी वजह से अब हद साबित नहीं होगी। तो यह माना है फली अन्ना तयक्कन्ना बिकज़बी अहदिल फरीकैन मिन गैर आइनिन, इसलिए क्योंकि हमने यकीन कर लिया कि दो फरीकों में से एक झूठा है, मिन गैर आइनिन बगैर तायीन के, यानी गैर मुअय्यन, मिन गैर आइनिन, हां तो दो फरीकों में से एक गैर मुअय्यन जो है वो यकीनन झूठा है। वह अम्मा अनी शुहूदी, और बाकी गवाहों से भी हद कजफ साकित हो जाएगी। फल इहतमाल सिद्क कुल्ली फरीकिन, इसलिए क्योंकि हर फरीक के सच्चा होने का एहतमाल है। भाई आगे देखिए, वह इन शहीदा अरबातुन अलमरातिम बिज़िना वही बेकुरुन। सूरत मसला ये कि चार गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत के साथ जिना किया है, और बाद में उस औरत को दूसरी औरतों ने देखा तो वो बाकेरा थी जी। वो बाकेरा थी, तो याद रखो इस सूरत में हद साकित हो जाएगी। उस मर्द और औरत पर हद जिना नहीं, क्योंकि अगर मर्द ने जिना किया है तो औरत की बकारत बाकी नहीं रह सकती थी, तो लिहाजा मर्द और औरत से हद साकित हो गई, और गवाहों पर भी हद नहीं आएगी क्योंकि चार गवाहों का निसाब पूरा है। भाई कहते हैं वह इन शहीदा अरबातुन अलम रातिम बिज़िना, और अगर चार आदमियों ने गवाही दी एक औरत के खिलाफ जिना की, वही बिकरुन, और हाल यह है कि वह बाकेरा है, दुरी अल हद अनहुमा व अनहुम, तो हद जो है वह साकित हो जाएगी अनहुमा उस मर्द और औरत से भी, व अनहुम और उन गवाहों से भी, लिअन्ना ज़िना ला यतहक्कुकु मा बका इल बकारति, इसलिए क्योंकि जिना वो साबित नहीं हो सकता बकारत के बाकी रहते हुए। व मानल मसअलति, और मसले का माना यह है साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं कि उसके बाकेरा होने का पता चला, तो वजाहत कर रहे हैं कि भाई औरतों ने उसको देखा और उसको बाकेरा पाया। भाई तो कहते हैं वह मानल मसअलती, और मसले का माना यह है कि अन निसा नजर न इलैहा, कि औरतों ने उस औरत को देखा, फकुलना तो उन्होंने कहा इन नहा बिकरुन की यह बाकेरा है, वह शहादतुहुन न हुज्जतुन फी इस्कातिल हद्दी, और औरतों की गवाही हद के साकित करने में हुज्जत है, वलैस बिहुज्जतिन फी इजाबी ही, और हद के वाजिब करने में हुज्जत नहीं है। भाई आप पढ़ चुके हैं हुदूद का मसला बड़ा नाजुक है, हुदूद का मसला बड़ा नाजुक है, तो इसके अंदर सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाएगी, औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, तो औरतों की गवाही से हद साबित नहीं हो सकती, लेकिन औरतों की गवाही से हद साकित हो सकती है। जैसे यहां पर औरतों ने गवाही दी कि यह औरत तो बाकिरा है जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया है, तो इनकी गवाही से हद क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी। तो कहते हैं वह शहादतुहुन्न हुज्जतुन फी इस्कातिल हद्दी, और औरतों की जो गवाही है वह हद के साकित करने में हुज्जत है, वलैस बिहुज्जतिन फी इजाबी ही, और औरतों की शहादत जो है वह हद के साबित करने में हुज्जत नहीं है, फलिहादा सकतल हद अनहुमा, तो इसी वजह से हद साकित हो गई उस मर्द और औरत से, वला यजिबु अलैहिम, और उन गवाहों पर हद वाजिब नहीं हुई, क्योंकि औरतों की गवाही से हद वाजिब वाजिब और साबित नहीं हो सकती, साकित हो सकती है तो साकित हो गई, लेकिन गवाहों पर हद वाजिब हो जाए वो औरतों की गवाही से नहीं हो सकता। तो ये माना है फलिहादा सकतल हद अनहुमा, इसीलिए हद जो है उस मर्द और औरत से तो साकित हो गई, वला यजिबु अलैहिम, और उन गवाहों पर वाजिब नहीं हुई। भाई आगे देखिए वह इन शहीदा अरबातुन अला रजुलिन बिज़्ज़िना वहुम उमियानुन औ महदूदुन फी क़ज़्फिन औ अहदुहुम अब्दुन औ महदूदुन फी क़ज़्फिन फ़इन्नहुम युहद्दून वला युहद्दुल मशहूदु अलैह। भाई यहां मसला समझने से पहले गवाहों की अकसाम समझ लें। भाई जहां किताबुन निकाह हमने शुरू की थी, बिल्कुल आगाज में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि इंदल अहनाफ मुसलमान के निकाह में दो गवाहों का होना शर्त है, गवाह होंगे तो निकाह होगा, गवाह नहीं तो निकाह भी नहीं। वहां पर मैंने गवाहों की अकसाम तफसील से बयान की थी। याद रखो गवाह चार किस्म के हो सकते हैं। भाई गवाह किसी भी मसले में चार किस्म के हो सकते हैं। कुछ वो गवाह हैं जो कामिल तरीके से तहम्मुल शहादत भी कर सकते हैं और अदाए शहादत भी जी। कुछ वो गवाह हैं जो अहले तहम्मुल भी हैं और अहले अदा भी हैं कामिल तौर पर। भाई एक है तहम्मुल शहादत, एक है अदाए शहादत। तहम्मुल शहादत का माना है गवाह बनना और अदाए शहादत का माना है गवाही देना। देखो एक शख्स निकाह करता है उसमें दो आकिल बालिग मर्दों को बिठाता है, तो ये दोनों मर्द गवाह बन गए। ये है तहम्मुल शहादत, यानी गवाह बन गए। और फिर बाद में अगर काजी के पास मसला पेश आया और फिर इन दो गवाहों को वहां जाकर गवाही देना पड़ी कि हमारे सामने इनका निकाह हुआ था, तो यह है अदाए शहादत, यानी गवाही देना, वो काजी के पास गवाही दे रहे हैं। तो दो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक है तहम्मुल शहादत यानी गवाह बनना, और एक है अदाए शहादत यानी गवाही देना, और गवाही देना वो काजी के पास होता है
जी।
तो याद रखो, गवाह जो हैं इस तहम्मुल शहादत और अदाए शहादत के एतबार से चार किस्म पर हैं। पहली किस्म के गवाह वो हैं जो अहले तहम्मुल भी हैं और अहले अदा भी हैं कामिल तरीके पर
जी।
पहली किस्म के गवाह वो हैं जो अहले तहम्मुल भी हैं और अहले अदा भी हैं कामिल तौर पर। दूसरी किस्म के गवाह वो होंगे जो अहले तहम्मुल भी हैं और अहले अदा भी हैं लेकिन नाकिस तौर पर, कामिल नहीं। और तीसरी किस्म गवाह वो होंगे जो अहले तहम्मुल तो हैं, वो गवाह बन तो सकते हैं लेकिन वो अहले अदा नहीं, वो गवाही दे नहीं सकते। ये तीसरी किस्म होगी। और चौथी किस्म गवाहों की वो है जो न अहले तहम्मुल हैं और न अहले अदा हैं, न वो गवाह बन सकते हैं और न वो गवाही दे सकते हैं। तो कितनी किस्म के गवाह हो गए? चार। ये पहली किस्म क्या? जो अहले तहम्मुल भी हैं और अहले अदा भी हैं कामिल तौर पर। और दूसरी किस्म जो अहले तहम्मुल और अहले अदा हैं लेकिन नाकिस तौर पर। तीसरी किस्म वो जो अहले तहम्मुल तो हैं लेकिन अहले अदा नहीं, वो गवाही दे नहीं सकते। काजी के पास चले भी जाएं तो काजी उनकी गवाही कबूल ही नहीं करेगा। और चौथी किस्म वो है जो अहले तहम्मुल भी नहीं और अहले अदा भी नहीं। तवज्जो है। अब अहले तहम्मुल और अहले अदा कामिल तौर पर वो गवाह हैं जिनमें पांच सिफतें पाई जाएं, आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान, और पांचवीं सिफत है कि वो आदिल हों, काबिल एतमाद हों, दीन पर ठीक तरह चलने वाले हैं और सच बोलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पांच सिफात जिस गवाह के अंदर होंगी वो अहले तहम्मुल भी है और अहले अदा भी है कामिल तौर पर। कौन सी पांच सिफात? आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान और आदिल हो। याद रखो, जब आदिल गवाह काजी के सामने आ जाएं और किसी मसले के अंदर आकर दो आदिल आदमी गवाही दे दें तो अब काजी को वो ही फैसला करना पड़ेगा। अब काजी मजबूर महज बन गया है, अब जो इन्होंने गवाही दी है वो ही फैसला करना पड़ेगा। अगर काजी ये फैसला नहीं करता तो वो इंदल्लाह मुजरिम होगा। तो जब काजी के पास आदिल गवाह आ जाएं तो काजी पर उनकी गवाही के मुताबिक फैसला करना लाजिम हो जाता है। ये तो थे वो गवाह जो अहले तहम्मुल भी हैं और अहले अदा भी हैं कामिल तौर पर। ये गवाह बन भी सकते हैं और गवाही दे भी सकते हैं कामिल तौर पर। दूसरी किस्म के वो गवाह हैं जो अहले तहम्मुल और अहले अदा हैं लेकिन नाकिस तौर पर, और वो है फासिक, भाई गुनागार, जो अल्लाह के अहकाम की ज्यादा परवाह नहीं करता, तो यह है फासिक भाई। ये अहले तहम्मुल भी है, ये गवाह बन भी सकता है। ये अहले अदा भी है, ये गवाही दे भी सकता है लेकिन कामिल तौर पर नहीं। ये काजी की मर्जी है इनकी गवाही कबूल करे या कबूल ना करे। अगर काजी को करीनों से पता चल जाए कि यह सच बोल रहा है तो फिर फासिक की गवाही कबूल कर सकता है, और अगर काजी चाहे तो रद्द भी कर सकता है। तो ये जो फासिक है ये अहले तहम्मुल भी है और अहले अदा भी है, अलबत्ता नाकिस तौर पर। और तीसरी किस्म है जो अहले तहम्मुल तो हैं लेकिन अहले अदा नहीं, वो गवाह बन तो सकते हैं गवाही दे नहीं सकते, और वो है अंधे या इसी तरह महदूद फिल कज़्फ। अंधा आदमी है ये गवाह बन तो सकता है गवाही दे नहीं सकता। लिहाजा निकाह के अंदर एक आदमी दो अंधों को बिठाता है और निकाह करता है, निकाह हो जाएगा क्योंकि ये गवाह बन सकते हैं लेकिन काजी के पास जाकर ये गवाही दे नहीं सकते। वजह यह कि जब गवाही देना पड़ती है तो जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं उसको देखना होगा कि यही है जिसके खिलाफ हम गवाही दे रहे हैं या कोई और है। जबकि अंधे तो सिर्फ आवाज के जरिए पहचानेंगे और उसके अंदर तो शुबा लग सकता है, आवाज में गलती लग सकती है। लिहाजा अंधे जो हैं वो अहले तहम्मुल तो हैं, अहले अदा नहीं है भाई। काजी के पास गवाही दे नहीं सकते। इसी तरह महदूद फिल कजफ जो है, महदूद फिल कजफ, वो शख्स जिसको हद कजफ लग चुकी है और उसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि इनको 80 कोड़े भी लगाओ, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, और इनकी गवाही कभी कबूल ना करो। तो इंदल अहनाफ ये गवाही का कबूल न करना यह बाकायदा हद का हिस्सा है, अब तमाम जिंदगी इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अलबत्त ये गवाह बन सकते हैं, लिहाजा एक शख्स निकाह करने लगा, उसमें उसने दो महदूद फिल कज़्फ आदमियों को गवाह बना लिया तो निकाह मुनक़िद हो जाएगा क्योंकि ये गवाह बन सकते हैं, ये अहले तहम्मुल हैं। अलबत्ता गवाही दे नहीं सकते, काजी के पास जाकर अगर इस निकाह के लिए उन्हें गवाही देना पड़ी तो काजी उनकी गवाही कबूल नहीं करेगा जी। तो ये अहले तहम्मुल तो हैं, अलबत्ता अहले अदा नहीं है। इस पर इश्काल होता है, कुरान में तो अल्लाह फरमा रहे हैं वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, इनकी गवाही कबूल न करो, तो इससे आपने अहले तहम्मुल होना कैसे साबित कर दिया। ये अहले तहम्मुल किस तरह है, हम कहते हैं आयत से साबित हो रहा है, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, इसी से साबित हो रहा है ये अहले तहम्मुल है, इसी से साबित हो रहा है यह अहले तहम्मुल है, इसलिए क्योंकि अल्लाह फरमा रहे इनकी गवाही कबूल ना करो। और मालूम हुआ इनमें गवाही की अहलियत है, इसीलिए तो अल्लाह फरमा रहे इनकी गवाही कबूल ना करो। अगर इनमें अहलियत ही ना होती तो अल्लाह यह ना फरमाते कि इनकी गवाही कबूल ना करो। जैसे मसलन एक अंधा है, अंधे को कोई नहीं कहता कि मत देखो क्योंकि वो देख ही नहीं सकता, या बहरा है उसको कोई नहीं कहता कि मत सुनो क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता। तो यहां पर भी अल्लाह फरमा रहे इनकी गवाही कबूल न करो, मालूम है इनमें अहलियत है, अगर अहलियत ही ना होती तो अल्लाह ये न फरमाते कि इनकी गवाही कबूल ना करो। तो मालूम हुआ अंधे और महदूद फिल कज़फ ये अहले तहम्मुल तो हैं, अहले अदा नहीं है। और चौथी किस्म के गवाह वो हैं जो न अहले तहम्मुल हैं न अहले अदा हैं, जो न गवाह बन सकते हैं न गवाही दे सकते हैं, वो और वो गुलाम हैं, बच्चे हैं, मजनून है, और इसी तरह मुसलमान के मामले में काफिर है, काफिर मुसलमान के खिलाफ गवाह बन ही नहीं सकता। तो ये जो गुलाम, बच्चा यानी नाबालिग है, मजनून है और काफिर, इनको बिठाकर कोई शख्स निकाह करता है तो फिर याद रखो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा क्योंकि इनमें गवाह बनने की सलाहियत ही नहीं है। तो गवाह कितनी किस्म के हो गए, चार, कुछ अहले तहम्मुल और अहले अदा हैं कामिल तौर पर, और वो गवाह हैं जो आजाद आकिल बालिग मुसलमान और आदिल हों, और दूसरी किस्म के गवाह वो हैं जो अहले तहम्मुल भी हैं और अहले अदा भी हैं लेकिन नाकिस तौर पर, और वो फासिक है भाई, और तीसरी किस्म के गवाह वो हैं जो अहले तहम्मुल तो हैं लेकिन अहले अदा नहीं, जैसे अंधा और महदूद फिल कज़फ, और चौथी किस्म के गवाह वो हैं जो न अहले तहम्मुल हैं और न अहले अदा हैं, जैसे गुलाम है, नाबालिग है, मजनून है और काफिर है भाई जी। अब आइए किताब पर भाई, कहते हैं वह इन शहीद अरबातुन अला रजुल बिज़िना वहुम उम्यानुन औ महदूदून फी कज़्फिन औ अहदुहुम अब्दुन औ महदूदुन फी कज़्फिन फइन्नहुम युहद्दून वला युहद्दुल मशहूद अलैह। सूरत मसला ये कि चार गवाहों ने आकर एक आदमी के खिलाफ गवाही दी जिना की, और वो चारों अंधे हैं, अंधे तो अहले अदा ही नहीं है, ये तो गवाही दे ही नहीं सकते, तो ये गोया सीधा का इल्जाम उस आदमी पर लगा रहे हैं, तो इन चारों को हद कजफ लगाई जाएगी। दूसरी सूरत, वो चार जो गवाह आए वो सारे महदूद फिल कजफ हैं, भाई आप तो गवाही दे ही नहीं सकते, तो गोया आप सिर्फ उस आदमी पर जिना का इल्जाम लगा रहे हैं, तो लिहाजा इन चारों को हद कजफ लगाई जाएगी। या उन चार में से एक गुलाम है या एक महदूद फिल कजफ है तो फिर इस सूरत में भी शहादत का निसाब पूरा नहीं है, तो इन सारों को हद लगाई जाएगी भाई। तो कहते हैं वह इन शहीद अरबातुन अला रजुलिन बिज़िना, और अगर चार गवाहों ने गवाही दी एक आदमी के खिलाफ जिना की, वहुम उम्यानुन इस हाल में कि वो गवाह अंधे हैं, और महदूदुन फी कज़्फिन या वो महदूद फिल कज़्फ हैं, और अहदुहुम अब्दुन और महदूदुन फी कज़्फिन या उनमें से एक गुलाम है या महदूद फिल कज़्फ है, फइन्नहुम युहद्दून तो इन गवाहों को हद लगाई जाएगी, वला युहद्दुल मशहूद अलैहि और मशहूद अलैह को हद नहीं लगाई जाएगी, यानी वो शख्स जिसके खिलाफ इन्होंने गवाही दी है उसको हद नहीं लगाई जाएगी क्योंकि इनकी गवाही से जिना साबित नहीं हो सकता। तो कहते हैं वला युहद्दुल मशहूद अलैहि, और मशहूद अलैह को हद नहीं लगाई जाएगी। लियन्नहु ला यस्बुतु बिशहादतिहिमुल मालु फकैफ यस्बुतुल हद्दु, कहते हैं इसलिए क्योंकि इन लोगों की गवाही से तो माल नहीं साबित हो सकता, अंधा है या महदूद फिल कजफ है, ये तो अहले अदाई नहीं, ये गवाही दे भी दें काजी के पास, इससे तो किसी का माल नहीं साबित हो सकता, और हद का मामला तो बड़ा नाजुक है, तो जब माल साबित नहीं हो सकता तो हद कैसे साबित हो सकती है। तो कहते हैं अन्नहु ला यस्बुतु बिशहादतिहिमुल मालु, इसलिए क्योंकि इनकी गवाही की वजह से माल साबित नहीं हो सकता, फकैफ यस्बुतुल हद्दु, तो हद कैसे साबित हो सकती है। वहुम लैसु मिन अहली अदा इश्शहादति, और हाल यह है कि ये अदाए शहादत के अहल नहीं है, ये अंधे और महदूद फिल कजफ ये अदाए शहादत के अहल नहीं है। वल अब्दुल्लाह सभी अहल लितहम्मुल वल अदाई, और गुलाम जो है वो तो अहले तहम्मुल भी नहीं है और अहले अदा भी नहीं है। फलम यस्बुत शुबहतु जिना, तो शुबह जिना भी साबित नहीं हुआ। भाई देखो, एक मर्द और औरत के खिलाफ चार आदमियों ने आकर गवाही दे दी कि इन्होंने जिना किया है, काजी ने पता करवाया तो पता चला ये चारों फासिक हैं, तो इस सूरत में हद साबित नहीं होगी। तो फिर सवाल पैदा होता है इन गवाहों को हद लगाई जाए, कहते हैं नहीं, ये फासिक हैं लेकिन हो सकता है इस मामले में ये सच बोल रहे हों, तो शहादत का निसाब पूरा है, हो सकता है ये सच बोल रहे हों, सिर्फ इनके फासिक होने की वजह से गवाही में शुबा आ गया, तो हद तो साबित नहीं हुई लेकिन फिर भी शुबा जिना तो आ गया कि हो सकता है सच बोल रहे हो, तो फासिक की गवाही से जिना तो साबित नहीं होता लेकिन शुबा जिना आ जाता है। जबकि जबकि ये जो गुलाम है या महदूद फिल कजफ वगैरह है भाई, इनकी गवाही से तो शुबा जिना भी साबित नहीं होता, क्योंकि इनमें से बाज अहले अदा नहीं है और बाज जो है वो अहले तहमुल भी नहीं और अहले अदा भी नहीं, तो फांसी की गवाही से भी शुबा तो आ जाता है लेकिन इनकी गवाही से तो शुबा भी नहीं आता। तो जब शुबा जिना इनकी गवाही से साबित नहीं होता तो जिना बतरीके औला इनकी गवाही से साबित नहीं हो सकता। तो कहते हैं फलम यस्बुत शुबहतु जिना, तो जिना का शुबा भी साबित नहीं हुआ। लिअन्ना जिना यस्बुतु बिल अदाई, इसलिए क्योंकि जिना तो अदाए शहादत से साबित होता है, और ये अंधा या महदूद फिल कजफ या गुलाम ये तो अहले अदा ही नहीं है। भाई आगे देखिए, व इन शहीदू भी जालिका वहुम फुस्साकुन, और अगर गवाहों ने जिना की गवाही दी, वहुम फुस्साकुन इस हाल में कि ये फासिक हैं, और जहरा अन्नहुम फुस्साकुन या गवाही के बाद जाहिर हुआ कि ये फासिक हैं, लम युहद्दू तो इनको हद नहीं लगाई जाएगी। गवाह गवाही देने आए जिना के मसले में लेकिन गवाही से पहले ही पता चला ये चारों फासिक हैं, तो फिर इस सूरत में इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी और खुद इन पर भी हद नहीं आएगी क्योंकि शहादत का निसाब पूरा है। या चार गवाहों ने गवाही दे दी और फिर काजी ने पता करवाया कि आदिल हैं या फासिक हैं, तो पता चला ये फासिक हैं, तो इस सूरत के अंदर भी हद भी साबित नहीं और खुद इन पर भी हद नहीं क्योंकि शहादत का निसाब तो बहरहाल पूरा है। तो इनकी गवाही से जिना तो साबित नहीं हुआ लेकिन बहरहाल शुबा जिना तो आ गया, हो सकता है ये सच बोल रहे हो भाई। तो कहते हैं वह इन शहीदू बिजालिका वहुम फुस्साकुन, और अगर गवाहों ने इस जिना की गवाही दी इस हाल में कि ये फासिक हैं, और जहरा अन्नहुम फुस्साकुन या गवाही के बाद ये बात जाहिर हुई कि ये फासिक हैं, लम युहद्दू तो इनको हद नहीं लगाई जाएगी। लिअन्न अल-फासिका मिन अहले अदा व तहम्मुल, इसलिए क्योंकि फासिक जो है वह अहले अदा और अहले तहम्मुल में से है। वह इन कान फी अदा ही नौ कुसूरिन, अगर चीज की अदा के अंदर एक किस्म की कमी है, कुसूर का क्या माना कमी, कमी है यानी नुकसान है नाकिस है। वह इनका नफी अदा ही नौ कुसूरिन, अगर चे इसकी अदाए शहादत के अंदर एक नौ की कमी है, लितोहमतिल फिस्की, फिसक की तोहमत की वजह से, इस पर फासिक होने की तोहमत है भाई, फासिक होने का इल्जाम है। तो कहते हैं लितोहमतिल फिस्की, फासिक होने के इल्जाम की वजह से, वलिहादा लौ कज़ल काजी भी शहादती फासिकिन, और इसी वजह से अगर काजी जो है फासिक की गवाही पर फैसला कर दे, यनफुज़ु इंदना, तो हमारे नजदीक नाफिज हो जाता है क्योंकि हमारे नजदीक फासिक अहले तहमुल भी है और अहले अदा भी है, अगरचे नाकिस तौर पर लेकिन बहरहाल वो अहले तहमुल भी है और अहले अदा भी है, अगर काजी उसकी गवाही पर फैसला कर देगा तो वो फैसला नाफिज हो जाएगा। तो कहते हैं फयसबुतु बिशहादतिहिम शुभतु ज़िना, तो इन फासिकों की गवाही से शुभह ज़िना साबित हो गया। व बेअतबारी कसूर इन फिल अदाइली तोहमतिल फिस्की, और फिसक के इल्जाम की वजह से इनकी अदा के अंदर जो कमी आई है उसके एतबार से यसबुतु शुभतु अदम ज़िना, अदम ज़िना का शुभा भी साबित होता है। फलिहादम तनाल हद्दानी, तो इसीलिए दोनों हदें मुमतनिया हो गई, न वो जिना करने वालों पर हद आएगी और न इन गवाहों पर हद कजफ आएगी। तवज्जो है भाई, देखिए चार फासिकों ने गवाही दी एक शख्स के जिना के बारे में, तो इन चार फासिकों की गवाही से जिना तो साबित नहीं हो सकता, अलबत्ता शुभह जिना आ गया तो मालूम है इनकी गवाही से हद जिना साबित नहीं, और फिर खुद इन गवाहों पर भी हद कजफ नहीं आएगी क्योंकि हो सकता है ये सच्चे हों। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं वह बेअतबार कसूर इन फिल अदाई, और इस एतबार से कि इनकी अदायगी के अंदर कमी है, लितोहमतिल फिस्क फासिक होने के इल्जाम की वजह से यसबुतु शुभतु अदम जिना, तो जिना न होने का शुभा साबित होता है। ये फासिक हैं इसकी वजह से शुबा होता है, शायद ये झूठ बोल रहे हों तो लिहाजा जिना न होने का शुबा होता है, तो इनकी गवाही से शुभह जिना आया क्योंकि ये अहले तहमुल भी हैं और अहले अदा भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये फासिक भी हैं उससे शुबा आया, हो सकता है झूठ बोल रहे हों तो शुबा आया जिना न होने का, तो जिना होने का भी शुबा और जिना न होने का भी शुबा। फलिहाद अमतनाल हद्दानी, इसीलिए दोनों हदें मुमतने हो गई, यानी हद जिना भी नहीं साबित और खुद इन पर हद कजफ भी नहीं साबित, यह माना है। फलिहाद अमतनाल हद्दानी, लिहाजा दोनों हदें मुमतने हो गई। वसयती फी खिलाफ शाफी रहमहुल्ला, और अन करीब इसके अंदर इमाम शाफी रहमहुल्ला का इख्तिलाफ आएगा। बिना अन अला असलिही, बिना बर उनके जाबते के, इमाम शाफी रहमहुल्लाह के जाबते की वजह से इस मसले में इमाम शाफी रहमहुल्लाह का इख्तिलाफ आगे आ जाएगा। उनका जाबता यह है कि अन्नल फासिक लैस मिन अहली शहादती, कि फासिक अहले शहादत ही नहीं है, उनके नजदीक फासिक अहले शहादत ही नहीं, लिहाजा इन चारों को भी हद कजफ लगाई जाएगी। जैसे अंधे या महदूद फिल कजफ आकर गवाही देते थे तो उनको हद कजफ लगाई जाती थी। तो कहते हैं बिना अन अला असलिही, बिना बर इमाम शाफी रहमहुल्लाह के जाबते के, क्या नल फासिक लैस मिन अहली शहादती, के फासिक जो है वो अहले शहादत नहीं है। फहुवा कल अब्द इंदहू, तो फासिक जो है वो गुलाम की तरह है उनके नजदीक, यानी जो अहले शहादत ही नहीं किसी तरह। व इन नकस अददु शुहूदी अन अरबातिन हुद्दू, भाई अगर गवाहों की तादाद चार से कम हो गई तो फिर सबको हद लगेगी क्योंकि ये कजफ है, ये शहादत नहीं। याद रखो जब चार गवाह काजी के पास आएंगे तो फिर ही ये गवाह हैं, अगर चार से कम आते हैं तो फिर ये तोहमत लगा रहे हैं, ये गवाह ही नहीं है भाई। समझ में आया, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीन यरमून अलमुहसनाती, और वो लोग जो पाकदामन औरतों पर जिना का इल्जाम लगाते हैं, सुम्मा लम यातु बि अरबाती शुहदा, फिर वो चार गवाह न लेकर आए, फजलिदूहुम समानी न जल्दा, तो उनको 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही भी कभी कबूल न करो। तो कहते हैं वह इन नकसा अददु शुहूदी अन अरबातिन, और अगर गवाहों की तादाद चार से कम हो गई, खुद दो तो उन सबको हद लगाई जाएगी। ले अन नहुम कजफतुन, इसलिए क्योंकि ये तोहमत लगाने वाले हैं, जब चार पूरे नहीं है तो ये गवाह है ही नहीं, ये तो तोहमत लगा रहे हैं। इजला हिस्बता इंदा नुकसान आददी व खुरूज शहादती अनिल कस्फ बेअतबारी हा, भाई देखिए मैंने आपको बतलाया था कि अदाए शहादत वाजिब है क्योंकि इसकी वजह से हकदार को उसका हक मिल जाता है, लेकिन हुदूद के मसले में गवाह को इख्तियार है, वो चाहे अदाए शहादत करे और चाहे पर्दापोशी कर ले, दोनों में उसको अजर मिलेगा क्योंकि अदाए शहादत का हुक्म भी शरीयत ने दिया है और पर्दापोशी का हुक्म भी शरीयत ने ही दिया है, तो वो जिस पर भी अमल कर लेगा उसे सवाब मिल जाएगा। तो यहां पर साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि अगर गवाहों की तादाद चार से कम हुई तो ये गवाही बने ही नहीं, गवाही अगर बन जाती फिर ये अजर का बाइस बनती, अगर गवाही हो जाती तो फिर ये अजर का बाइस होती, लेकिन गवाही तो तब बनेगी जब चार गवाह आएंगे और ये तो चार से कम है, तो मालूम है ये अजर का बाइस नहीं बन रहे, ये सिर्फ कजफ ही कजफ है। याद रखो, एक है कजफ, एक है शहादत। जीना के बाब में जब निसाब पूरा हो जाएगा तो ये शहादत बन गई, और अगर निसाब से कम है तो ये कजफ है, ये शहादत है ही नहीं। तो लिहाजा अदद पूरा होगा तो ये कजफ से निकलकर शहादत बन जाएगी, बाई से अजर होगा, और अगर अदद ही पूरा नहीं तो फिर ये कजफ ही कजफ है, लिहाजा इस सूरत में हद कजफ साबित होगी। तो कहते हैं लिअन्नहुम कज़फ़तुन, इसलिए क्योंकि ये तोहमत लगाने वाले हैं। इज़ला हिस्बता इंदा नुकसानिल अददी, हिस्बा हिस्बतुन का माना है सवाब और अजर। इज़ला हिस्बता इंदा नुकसानिल अददी, इसलिए क्योंकि कोई सवाब और कोई अजर नहीं है अदद के कम होते वक्त, यानी जब गवाहों का अदद चार से कम हो। वखुरूज शहादती अनिल कज़्फ़ बेअतिबारिहा, और शहादत का कज़फ़ से निकलना वो इसी सवाब के एतबार से था। तो आदद पूरा होगा तभी ये कजफ से निकलकर गवाही बनेगी और बाई से अजरो सवाब होगी। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, इजला हिस्बता इंदा नुकसान इल अददी, इसलिए क्योंकि कोई अजर नहीं है अदद में कमी के वक्त। वखुरूज शहादति अनिल कज़्फ बेअतिबारिहा, और शहादत का कजफ से निकलना, शहादत का कजफ से निकलकर क्या बन जाना, शहादत बन जाना। तवज्जो है, शहादत का कजफ से निकल जाना वो कब होगा, जब अदद पूरा होगा, और उसी वक्त फिर अजर भी मिलेगा, उससे पहले तो अजर भी नहीं और शहादत भी नहीं। तो ये माना है वफुरूज शहादत अनिल कज़्फ़ी, और शहादत का कजफ से निकलना बेअतिबारिहा, इस अजर के एतबार से होता है, और अजर तो तब मिलेगा जब चार गवाहियां पूरी होंगी, उससे पहले तो यह कजफ है शहादत नहीं और ना बाई से अजर है। भाई आगे देखिए, व इन शहीदा अरबातुन अला रजुलिन बिज़्ज़िना फ़ज़ुरिब बिशहादतिहिम सुम्म वुजिदा अहदुहुम अब्दन औ महदूदन फी क़ज़्फिन फ़इन्नहुम युहद्दूना। सूरत मसला ये कि चार आदमियों ने एक आदमी के खिलाफ ज़िना की गवाही दी और उस शख्स पर हद जारी कर दी गई, और बाद में पता चला इन गवाहों में से एक गुलाम है या इन गवाहों में से एक महदूद फिल क़ज़्फ़ है, तो फिर इस सूरत में याद रखो अब इन सब गवाहों को हद लगाई जाएगी। इसलिए क्योंकि यहां शहादत का निसाब पूरा नहीं था, ये जो महदूद फिल कजफ था ये तो अहले अदा नहीं है, और अगर वो गुलाम था तो गुलाम तो ना अहले तहमुल है और ना अहले अदा, तो गवाह सिर्फ तीन हैं, और जब गवाह सिर्फ तीन हैं तो ये तो कजफ है, ये शहादत नहीं, क्योंकि कजफ से निकलकर शहादत कब बनती है, जब अदद पूरा हो जाए। तो कहते हैं वह इन शाहिदा अरबातुन अला रजुलिन बिज़्ज़िना, और अगर चार गवाहों ने गवाही दी एक आदमी के खिलाफ ज़िना की, फ़ज़ुरिब बिशहादतिहिम, तो उस आदमी को ज़र्ब लगाई गई यानी कोड़े लगाए गए यानी हद ज़िना लगाई गई, बिशहादतिहिम इन गवाहों की गवाही की वजह से, सुम मवजिदा अहदुहुम अब्दन औ महदूदन फी क़ज़्फिन, फिर इन गवाहों में से एक जो है उसको गुलाम पाया गया या महदूद फिल क़ज़्फ पाया गया, फ़इन्नहुम युहद्दूना, तो फिर इन सब गवाहों को हद लगाई जाएगी, लिअन्नहुम कज़फ़तुन, क्योंकि ये तोहमत लगाने वाले हैं, इदि शुहूदु सलासतुन, क्योंकि गवाह तो तीन हैं और हालांकि चाहिए कितने थे, चार थे, तो सबको हद लगेगी। आगे देखिए, वलैसा अलैहिम वला अला बैतिल माली अर्शुज़ ज़र्बी व इन रुजिमा फदियतुहु अला बैतिल माली। भाई देखो, यहां अर्श का लफ्ज आया, याद रखो पूरी इंसानी जान के अंदर जो जमान आया करता है उसको दियत कहते हैं। अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी को गलती से कत्ल कर दिया तो फिर इस सूरत में पूरी जान का जो जमान आता है उसको दियत कहते हैं, जबकि अर्श कहते हैं जख्मों का जमान। भाई यानी मसलन किसी के चेहरे या सर वगैरह पर जख्म लग गया, अब इस जख्म का निशान तो सारी उम्र के लिए रहेगा, लिहाजा इस सूरत में जमान आया करता है उस जख्म लगाने वाले पर, और इसको अर्श कहते हैं, इसको अर्श कहते हैं। भाई हमजा रा और शीन, भाई अर्श। तो अब यहां मसला यह जिक्र हो रहा है कि भाई चार गवाहों ने गवाही दी है एक आदमी के खिलाफ जिना की, और फिर उस आदमी पर हद जिना जारी कर दी गई। अगर वो शादीशुदा था तो रजम कर दिया गया, और अगर गैर शादीशुदा था तो उसको 100 कोड़े लगा दिए गए। उसके बाद पता चला कि इन गवाहों में से एक गवाह जो है वो गुलाम है, मालूम हो गवाही का निसाब पूरा नहीं, या इन गवाहों में से एक गवाह महदूद फिल कजफ है, गुलाम जो है वो न तो अहले तहमुल है और न अहले अदा है, और महदूद फिल कजफ वो तो अहले अदा नहीं, तो बहरहाल चाहे गुलाम हो या महदूद फिल कजफ ये अदाए शहादत नहीं कर सकते, इनमें अहलियत ही नहीं है। तो मालूम हुआ काजी ने जो फैसला किया था यकीनी तौर पर पता चल गया कि वह गलत फैसला था। जब हद नाफिज करने के बाद चारों गवाहों में से एक के बारे में पता चल गया कि वो गुलाम था या महदूद फिल कजफ था, तो यकीनी तौर पर एक बात का पता चल गया कि काजी से गलती हुई है फैसला करने में। तो अब इस सूरत में क्या जमान आएगा या नहीं, तो इस सूरत में सबसे पहले तो ये याद रखें कि अगर उस शख्स को रजम किया गया है, यानी इन गवाहों की गवाही की वजह से उसको रजम किया गया क्योंकि वो शादीशुदा था, तो फिर इस सूरत में एक इंसानी जान गई है और उसको रजम किया गया है काजी के फैसले की वजह से, और काजी तो काम करता है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की मुश्किलात हल कर रहा है, तो लिहाजा इस जान का जो जमान है वो भी मुसलमानों के माल में से लिया जाएगा, यानी बैतुल माल से यह जमान अदा किया जाएगा। ये बिल इत्तेफाक है, साहिबैन के नजदीक भी यह मसला इसी तरह, इमाम साहब के नजदीक भी मसला इसी तरह है कि अगर रजम करने के बाद पता चला कि गवाहों में से कोई गुलाम था या महदूद फिल कजफ था, तो मालूम हुआ काजी ने गलती की है, तो लिहाजा बैतुल माल से अब जमान अदा किया जाएगा, यानी पूरी दियत अदा की जाएगी। लेकिन अगर वो जो हद जारी की गई थी वो रजम नहीं थी बल्कि कोड़े लगाए गए थे, कोड़े लगाए गए थे, और फिर याद रखना कि कोड़े लगाने में फिर तीन सूरतें बन सकती हैं। एक सूरत तो यह है कि कोड़े की सिर्फ तकलीफ हुई उस आदमी को, कोई जख्म नहीं लगा और वो हलाक भी नहीं हुआ। दूसरी सूरत यह है कोड़े लगाने से जख्म लगा, अब इस जख्म का निशान तो सारी उम्र बदन पर रहेगा, तो लिहाजा इस सूरत में जमान आना चाहिए भाई, क्योंकि उस आदमी के बदन पर एक निशान लग गया जो सारी उम्र के लिए रहेगा। और तीसरी सूरत यह है कि कोड़े लगने की वजह से वो जिसको कोड़े लगाए गए थे वो मजरूब ही हलाक हो गया। तो याद रखो अगर कोड़ों की सिर्फ तकलीफ हुई है, जख्म भी नहीं लगा और वो मजरूब हलाक भी नहीं हुआ, फिर तो बिल इत्तेफाक कोई जमान नहीं आएगा। सिर्फ तकलीफ हुई है, कोई जख्म वगैरह नहीं लगा, हलाकत नहीं हुई, साहिबैन भी फरमाते हैं कोई जमान नहीं, इमाम साहब भी फरमाते हैं कोई जमान नहीं। हां, लेकिन जर्ब की वजह से जख्म लगा है या हलाकत हुई है तो फिर इमाम साहब और साहिबैन इख्तिलाफ करते हैं। इमाम साहब फरमाते हैं इस सूरत में कोई जमान नहीं आएगा, जबकि साहिबैन फरमाते इस सूरत में भी जमान आएगा, और चूंकि यह जर्ब लगाने का हुक्म काजी ने दिया था तो लिहाजा अब यह बैतुल माल में से यह जमान अदा किया जाएगा जी। बैतुल माल में से यह जमान अदा किया जाएगा। फिर सुन ले मसले की तफसील, यहां पर चार गवाहों ने गवाही दी और उसके बाद एक आदमी पर हद जिना जारी कर दी गई, और फिर उन चार गवाहों में से पता चला एक या दो या जितने भी हैं वो गुलाम थे या महदूद फिल कजफ थे, तो बहरहाल गवाही का निसाब पूरा नहीं था, तो यकीनी तौर पर पता चल गया कि काजी ने गलत फैसला किया था। तो फिर इसके अंदर अगर उस शख्स को रजम किया गया था तो फिर तो जमान जो है वो बैतुल माल से अदा किया जाएगा, क्योंकि काजी की गलती की वजह से उसकी जान गई है, मालूम है काजी ने यकीनी तौर पर गलत फैसला किया था, तो बैतुल माल से जमान अदा किया जाएगा। और अगर वो उस आदमी को कोड़े लगाए गए हैं तो फिर कोड़े लगाने में एक सूरत तो यह है सिर्फ तकलीफ हुई है, जख्म वगैरह नहीं लगा, हलाकत नहीं हुई, तो उसमें भी इत्तेफाक है इमाम साहब और साहिबैन का कि कोई जमान नहीं आएगा, क्योंकि कोई जख्म नहीं लगा और कोई हलाकत नहीं हुई। लेकिन अगर जख्म लगा है या हलाकत हुई है तो इस सूरत में साहिबैन फरमाते हैं कि इस सूरत में जमान आएगा, और यह जमान किसकी वजह से आया है, काजी की वजह से, किसकी वजह से, काजी के फैसले की वजह से, लिहाजा मुसलमानों के माल में से इसको अदा किया जाएगा, यानी बैतुल माल में से, बैतुल माल में से। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, यहां किसी पर जमान नहीं आएगा। इमाम साहब फरमाते हैं यहां हकीकत में जमान तो जल्लाद पर आना चाहिए, जल्लाद भाई जल्द से है, कोड़े लगाने वाला, तो इमाम साहब फरमाते हैं यहां पर कोड़े लगाने की वजह से दूसरा शख्स जो जख्मी हुआ है या हलाक हुआ है यह किसी और की गलती नहीं है, यह जल्लाद की गलती है, तो लिहाजा जमान जल्लाद पर आना चाहिए। लेकिन हम जल्लाद पर भी जमान को वाजिब नहीं कर सकते, वरना तो कोई भी शख्स कोड़े लगाने और हद कायम करने के लिए तैयार नहीं होगा कि कहीं दूसरे को नुकसान पहुंच गया तो मुझे जुर्माना हो जाएगा भाई जी। सूरत समझ में आ गई। देखिए साहिब हिदायत इसको और वजाहत के साथ बयान फरमाएंगे, तो कहते हैं वलैसा अलैहिम वला अला बैतिल माली अर्शुज जर भी, और नहीं है इन गवाहों पर और ना ही बैतुल माल पर अर्शुज जर भी, जर्ब का अर्श, जर्ब का जो जमान है वो इन गवाहों पर भी नहीं और बैतुल माल पर भी नहीं। ये इमाम साहब का मजहब बयान हो रहा है, क्योंकि उनकी राय में गलती किसकी है, कोड़े लगाने वाले की है। लिहाजा गवाहों पर भी कोई जमान नहीं और बैतुल माल पर भी कोई जमान नहीं। और मैंने आपको बताया जमान सिर्फ उस सूरत में आएगा जब जिस्म पर जख्म लगे, अगर जख्म नहीं लगा सिर्फ तकलीफ हुई है तो फिर उसका कोई जमान नहीं है। तो कहते हैं वलैसा अलैहिम वला अला बैतिल माली अर्शु जरबी, और ना तो इन गवाहों पर है और ना बैतुल माल पर है जरब का जमान। व इन रुजिमा, और अगर इस शख्स को रजम किया गया इनकी गवाही की वजह से, फदियतुहु अला बैतिल माली, तो इस आदमी की दियत बैतुल माल पर है। भाई एक गवाह गुलाम निकला है या एक गवाह महदूद फिल कजफ, मालूम हुआ गवाही का निसाब पूरा नहीं, तो मालूम हुआ यकीनी तौर पर काजी ने गलत फैसला किया। जब काजी ने गलत फैसला किया, काजी तो मुसलमानों के लिए काम में लगा हुआ है, लिहाजा यह जमान भी मुसलमानों के माल यानी बैतुल माल से अदा किया जाएगा। तो कहते हैं वह इन रुजिमा फदियतुहु अला बैतिल माली, और अगर इस शख्स को रजम किया गया तो इसकी दियत बैतुल माल पर आएगी। बात समझ में आ गई, क्यों बैतुल माल पर आएगी, क्योंकि यकीनी तौर पर पता चल गया कि काजी का फैसला गलत था। तो कहते हैं वहादा इंदा अबी हनीफा तरहमहुल्ला, और ये इमाम साहब के नजदीक है। क्या इमाम साहब के नजदीक जर्ब का अर्श जो है वो ना बैतुल माल पर आएगा और ना गवाहों पर आएगा, और रजम की दियत बैतुल माल से अदा की जाएगी। ये बिल इत्तेफाक है, साहिबैन भी यही फरमाते हैं कि बैतुल माल से इस आदमी की दियत अदा की जाएगी, क्योंकि यकीनी तौर पर पता चल गया कि काजी का फैसला गलत था। तो कहते हैं वहादा इंद अबी हनीफा तरहमल्ला, तो ये इमाम साहिब के नजदीक है। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं अर्शु जरब ऐजन अला बैतिल माली, के जरब का जो अर्श है, जरब का जो जमान है, वो भी बैतुल माल पर आएगा। काल अल अब्दुल ज़ईफ, काल अल अब्दुल ज़ईफ से मुराद साहिब हिदाया है। काल अल अब्दुल ज़ईफ, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, आसमहुल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, मानाहु, माना इसका यह है। साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं, ये जो पीछे मतन में आया जरब का अर्श न बैतुल माल पर आएगा और ना गवाहों पर, और साहिबैन फरमाते हैं जरब का अर्श बैतुल माल पर आएगा। तो साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं ये जरब का अर्श उस वक्त है जब जख्म लगा हो, सिर्फ तकलीफ हुई थी उसका कोई जमान नहीं है, और अगर जख्म लगा है तो जख्म का तो निशान रहेगा सारी उम्र, तो उसका जमान आएगा भाई। तो कहते हैं काल अल अब्दुल ज़ईफ, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, आसमहुल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, मानाहु, के इस कौल का माना यह है, इदा काना जरहहु, कि जब जरब ने उसको जख्मी किया हो फिर अर्श जरब आएगा। वाला हाद अल खिलाफी इदा माता मीना जरबी, और इसी इख्तिलाफ पर है जब वो शख्स मर जाए जर्ब की वजह से, जो इख्तिलाफ जर्ब के जमान में था वही इख्तिलाफ मौत की सूरत में भी है अगर जिसको कोड़े लगाए गए हैं वो मर जाए। तो कहते हैं वाला हाद अल खिलाफी इदा माता मीना जरबी, और इसी इख्तिलाफ पर है जब वो शख्स मर जाए जर्ब की वजह से। वाला हादा इदा रजा शुहूदु ला यज़मनूना इंदहू व इंदहुमा यज़मनूना, और इसी इख्तिलाफ पर है कि जब गवाह रुजू कर लें तो वो जामिन नहीं होंगे इमाम साहिब के नजदीक, और साहिबैन के नजदीक वो जामिन होंगे। भाई मैंने आपको बतलाया अगर गवाह गुलाम या महदूद फिल कजफ निकले फिर तो जमान बैतुल माल से लेंगे साहिबैन के नजदीक, इमाम साहिब के नजदीक किसी पर जमान नहीं आएगा, यह जल्लाद का कसूर है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर गवाहों ने रुजू नहीं किया फिर तो जमान बैतुल माल से लेंगे, और अगर गवाहों ने रुजू किया है तो जमान गवाहों से लेंगे। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, चाहे गवाह रुजू करें या ना करें किसी सूरत में जमान नहीं आएगा, जमान तो जल्लाद पर आना चाहिए था लेकिन जल्लाद पर हम जमान वाजिब नहीं कर सकते। तो कहते हैं वाला हादा, और इसी इख्तिलाफ पर है, इदारा जा शुहूद, जब गवाह रुजू कर लें, ला यज़मनूना इंदहू, तो इमाम साहब के नजदीक वो जामिन नहीं होंगे, व इंदहुमा यज़मनूना, और साहिबैन के नजदीक ये गवाह जामिन होंगे, लहुमा, साहिबैन की दलील ये है कि अन्नल वाजिब बि शहादतिहिम मुतलकुज़ ज़र्बी। भाई देखिए साहिबैन फरमाते हैं कि इनकी गवाही की वजह से मुतलक ज़र्ब साबित हुई, गवाहों की, भाई ये हद किसकी वजह से साबित हुई है, गवाही की वजह से ना, तो इन गवाहों की गवाही की वजह से मुतलक जर्ब साबित हुई है, चाहे वो जर्ब जख्म लगाने वाली हो या जख्म लगाने वाली ना हो, चाहे हलाक करने वाली हो, मुतलक जर्ब है, इसमें किसी किस्म की कैद नहीं है। हो सकता है सिर्फ इसमें तकलीफ हो सकता है इसमें जख्म लग जाए, हो सकता है इसमें दूसरा आदमी मर जाए, कुछ भी हो सकता है, मुतलकन जर्ब साबित हुई है इनकी गवाही से। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, इन गवाहों की गवाही से मुतलक जर्ब साबित नहीं हुई, बल्कि ऐसी जर्ब साबित हुई है जिससे दूसरे को जख्म भी ना लगे, जिससे दूसरा हलाक भी ना हो। तवज्जो है जी। तो साहिबैन के नजदीक मुतलक जर्ब साबित हुई है, तो लिहाजा ये जो नुकसान होगा अगर गवाहों ने रुजू कर लिया तो इन्हीं से पूरा किया जाएगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं इनकी गवाही की वजह से तो ऐसी जर्ब साबित हुई कि जिससे जख्म भी ना लगे और जिससे दूसरा हलाक भी ना हो। तो अगर जख्म लग गया या हलाक हो गया, ये तो जल्लाद की गलती है, ये तो गवाहों की गलती नहीं है भाई। लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल वाजिब बिशहादत ही मुतलक जरबी, कि वो जरब जो वाजिब हुई थी इन गवाहों की गवाही की वजह से मुतलक जरबी, वो मुतलक जरब है। इसीलिए एहतराज अनिल जर्ह खारिज अनिल वुसई, इसलिए क्योंकि बचना जख्म से खारिज अनिल वुसई, ये तो गुंजाइश से बाहर है, ये तो किसी के बस में नहीं है। जल्लाद ऐसे कोड़े लगाए कि दूसरे को जख्म ना लगे, ये तो उसके बस में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। मालूम हुआ मुतलक जर्ब जो है मुतलक जर्ब साबित हुई है, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इसीलिए एहतराज अनिल जर्ह, इसलिए क्योंकि जख्म से बचना खारिज अनिल वुसई, ये तो वुसअत से खारिज है, यानी ये तो किसी के बस में नहीं है। फयंतजिमुल जारिह वगैरह, जारिह कहते हैं जख्मी करने वाला, फयन तजिमुल जारह, तो यह मुतलक जर्ब शामिल है जरब जारह को भी और गैर जारह को भी, यह मुतलक जर्ब शामिल है कि जर्ब होनी चाहिए, जैसे भी जर्ब हो, चाहे जारह हो यानी जख्म लगाने वाली हो, चाहे गैर जारह हो। तो फयन तजिमुल जारह वगैरह, तो मुतलक जर्ब जो है वो शामिल हुई जरब जारह को भी और गैर जारह को भी। फयुजाफ इला शहादतिहिम, लिहाजा इस जख्म और हलाकत को इन्हीं की गवाही की तरफ मंसूब किया जाएगा। फयाजमनून बिर रुजूई, तो लिहाजा ये जामिन होंगे रुजू करने की वजह से, रुजू करेंगे तब जामिन होंगे, गवाह अगर गवाही से रुजू करें तब जामिन होंगे। अगर वो रुजू नहीं करते बल्कि उनमें से एक गुलाम निकल आया या उनमें से एक महदूद फिल कजफ निकल आया, फिर गवाहों पर जमान नहीं है बल्कि बैतुल माल से अदा किया जाएगा। तो कहते हैं फयाजमनून बिर रुजूई, तो रुजू करने की वजह से ये गवाह जामिन होंगे। वइंद अदम रुजूई, और जिस वक्त रुजू न हो तो यजिब अला बैतुल माल, तो जमान जो है बैतुल माल पर वाजिब होगा, जमान बैतुल माल पर वाजिब होगा। किस वक्त? जब इन गवाहों में से कोई गुलाम निकल आया या महदूद फिल कजफ निकल आया। तो कहते हैं वह इंदा आदमी रुजू यजिबू अला बैतुल माल, और गवाहों के रुजू न करते वक्त जो जमान है वो बैतुल माल पर वाजिब होगा। लिअन्नहु यंतकिलु फ़िअलुल जल्लादी इलल काजी, इसलिए क्योंकि जल्लाद का फ़िअल मुंतकिल हो गया काजी की तरफ। भई ये जल्लाद ने कोड़े क्यों लगाए थे? काजी ने हुक्म दिया था, तो आपने पढ़ा है फ़िअल मुंतकिल हो जाता है हुक्म देने वाले की तरफ। तो कहते हैं लिअन्नहु यंतकिलु फ़िअलुल जल्लादी इलल काजी, इसलिए क्योंकि जल्लाद का फेल जो है वो मुंतकिल हो गया काजी की तरफ। वह हुआ आमिलुल लिल मुस्लिमीना, और काजी जो है वो तो मुसलमानों के लिए अमल कर रहा है, वो तो मुसलमानों के काम में लगा हुआ है। फतजिबुल गरामतु फी मालिहिम, गरामत कहते हैं जुर्माना और तावान को। फतजिबुल गरामतु फी मालिहिम, लिहाजा जुर्माना भी मुसलमानों के माल में से ही वाजिब होगा। फसारा कर रजम वल किसास, तो ये अर्श भी रजम और किसास की तरह हो गया। तो ये अर्श जो, ये जख्म का जो जमान आया या मौत का जो जमान आया, ये भी रजम और किसास की तरह हो गया। और रजम और किसास के अंदर तो बिल इतफाक जो है दियत बैतुल माल पर आती है। ऊपर रजम का मसला गुजरा, जब एक गवाह गुलाम निकला या महदूद फिल कजफ निकला और इस आदमी को तो रजम कर दिया गया है, तो आपने पढ़ा कि बिल इतफाक वो जो दियत है वो बैतुल माल से आएगी। वजह यह क्योंकि ये रजम जो इसको किया गया ये काजी के फैसले की वजह से किया गया, और काजी तो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, लिहाजा इसका जुर्माना भी मुसलमानों के माल में से वसूल किया जाएगा। तो जिस तरह रजम और किसास के अंदर जब काजी के फैसले की गलती साबित हो जाए यकीनी तौर पर, तो वहां पर जो जुर्माना है वो बैतुल माल से अदा किया जाता है, तो यहां पर भी ये जो अजर्ब का अर्श आया है ये बैतुल माल से अदा किया जाएगा। ये किसकी दलील चल रही है? साहिबैन की। तो कहते हैं फतजिबुल गरामतु फी मालिहिन, लिहाजा जुर्माना भी मुसलमानों के माल में वाजिब होगा। फसार कर रजमी वल किसासी, तो ये अर्श भी रजम और किसास की तरह हो गया। वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि नलवाजिबा हुवल जल्द, इमाम साहब फरमाते हैं मुतलक जल्द, मुतलक कोड़े लगाना वाजिब नहीं हुआ था, बल्कि ऐसे कोड़े जिसमें जख्म भी ना लगे और दूसरा हलाक भी ना हो, ऐसे कोड़े वाजिब हुए थे। और अगर जख्म लगा है या दूसरा मर गया है तो यह जल्लाद की गलती है भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि अनल वाजिब हुवल जल्द, कि वो चीज जो वाजिब हुई थी वो कोड़े लगाना है। वह हुआ ज़र्बुन मुअलिमुन गैरु जारिहिन वला मुहलिकिन, वह हुआ ज़र्बुन, और कोड़े लगाना वो ऐसी ज़र्ब है मुअलिमुन जो तकलीफ देने वाला हो, गैरु जारिहिन जख्मी करने वाला ना हो, वला मुहलिकिन और हलाक करने वाला भी ना हो। भाई ये मोहलिकिन का आतफ है जारिह पर भाई, और ये जो वला मोहलिकिन, ये जो ला है ये जायद है, जैसे गैरिल मखजूबी अलैहिम वला ज़ालिम, तो यहां पर भी ये ला जायद है भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं अन नलवाजिबा हुवल जल्दु, कि वो चीज जो वाजिब हुई है वो कोड़े लगाना है। वह हुआ ज़र्ब मुअलिमुन गैरु जारिहिन वला मुहलिकिन, और वो ऐसी ज़र्ब है जो तकलीफ देने वाली हो, जख्मी करने वाली और हलाक करने वाली ना हो। फला यकउ जारिहन ज़ाहिरन इल्ला लिमानन फिज़्ज़ारिबी, फला यकउ जारिहन, लिहाजा ये ज़र्ब जो है जारिह होकर वाक़े नहीं होगी, ये ज़र्ब जारे होकर नहीं हो सकती, जाहिरन जाहिर के एतबार से, इल्ला लिमानन फि जारिबी, मगर जारिब के अंदर किसी सबब की वजह से। मालूम हुआ कमी और कोताही जारिब के अंदर आई है, वरना इस जर्ब को जारह या मोहलिक नहीं होना चाहिए था। तो कहते हैं फला यकउ जारिहन जाहिरन, लिहाजा यह जर्ब जो है जारह होकर वाक नहीं हो सकती, जाहिरन जाहिर के एतबार से, इल्ला लिमानन फि जारिबी, मगर जारिब के अंदर किसी सबब के पाए जाने की वजह से। वह हुआ किल्लतु हिदायती ही, और वह उसकी कम महारत है। मालूम हुआ कोड़े लगाने वाले को कोड़े लगाने में पूरी महारत नहीं है भाई। तो हिदायत से मुराद यहां महारत है उसकी, यानी एक चीज को सीखना, एक चीज को जानना। तो कहते हैं वह वकीलत हिदायत ही, और वो इसका कम जानना है। मालूम हुआ ये कोड़े लगाने को पूरी तरह नहीं जानता। तो कहते हैं वह वकीलत हिदायत ही, और वो इसका कोड़े लगाने को कम जानना है। फकता सारा अलई ही, लिहाजा यह जर्ब उसी पर बंद रहेगी, या ये फेल उसी पर बंद रहेगा, यानी कोड़े लगाने वाले पर। ये जो जख्म लगाने वाली जर्ब है ये कोड़े लगाने वाले पर ही बंद रहेगी, ये काजी की तरफ मुंतकिल नहीं होगी, ये काजी का कसूर नहीं है जी। वैसे तो फाइल का फेल आमिर की तरफ मुंतकिल हो जाता है जो हुक्म देने वाला है, और यहां काजी हुक्म देने वाला है, लेकिन काजी ने तो किस किस्म की जर्ब का हुक्म दिया? उसने सिर्फ ऐसी जर्ब जिसमें दूसरे को जख्म भी ना लगे और वो हलाक भी ना हो। लिहाजा ये जो जल्लाद की गलती है ये काजी की तरह मुंतकिल नहीं होगी, ये काजी का फेल नहीं है, लिहाजा बैतुल माल में से इसको वाजिब नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं फक्तसर अलैही, तो ये जर जो है उसी जल्लाद पर बंद रहेगी। इल्ला अन्नहु ला यजिबु अलैही जमान फि सहीह, मगर ये कि उस जल्लाद पर जमान वाजिब नहीं होगा, फि सहीह सही कौल के मुताबिक। एक कौल के मुताबिक जल्लाद पर जमान आएगा, लेकिन सही कौल के मुताबिक जल्लाद पर जमान नहीं आएगा। कई ला यमतनी अन्नास अनिल इकामती, ताकि कहीं लोग रुक ना जाए अनिल इकामती हद कायम करने से, मखाफतल गरामती जुर्माने के खौफ से। जुर्माने के खौफ से फिर तो कोई कोड़े लगाने के लिए तैयार ही नहीं होगा भाई। तो कहते हैं कैला यमतन अन्नास अनिल इकामती मखाफतल गरामती, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हद कायम करने से रुक जाएं जुर्माने के खौफ से। आगे देखिए वह इन शहीद अरबातुन अला शहादती अरबातिन अला रजुलिन बिज़्ज़िना लम युहद्दा, भाई अब शहादत अला शहादत का मसला आया, गवाही पर गवाही। भाई आपने अब तक यह पढ़ा है कि एक मसले के अंदर गवाह पेश किए जाते हैं, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि गवाहों को कोई उजर है, वो काजी के पास नहीं आ सकते, मसलन वो शदीद बीमार हैं या उनको सफर पर जाना है, मसलन उनको कल गवाही के लिए पेश होना है काजी के पास, लेकिन आज ही वो हज के सफर पर जा रहे हैं, तो जब उजर पेश आ जाए तो फिर शरीयत ने इजाजत दी है कि गवाह अपनी गवाही पर किसी और को गवाह बना दें और वो जाकर काजी के पास गवाही दे दें। मसलन जैद सफर पर जा रहा है तो जैद अपनी गवाही पर दो गवाह बना देगा, एक गवाह नहीं बनाएगा बल्कि अपनी गवाही पर दो गवाह बनाएगा और उनसे कहेगा कि तुम गवाह हो जाओ मेरी गवाही पर, मैं गवाही देता हूं कि मेरे सामने फुला और फुला के दरमियान यह बैअ हुई थी। मसलन बैअ का मसला है, बैअ का मसला पेश आया है और वो गवाही की जरूरत है काजी के पास, और यह गवाह शदीद बीमार है या यह हज पर जा रहा है आज ही, तो यह किसी और को गवाह बनाएगा अपनी गवाही पर और दो गवाहों को बनाएगा और क्या कहेगा कि तुम गवाह हो जाओ मेरी गवाही पर, और फिर आगे कहेगा मैं गवाही देता हूं कि मेरे सामने फुला और फुला के दरमियान यह बैअ हुई थी इतने पैसों में जी। और फिर ये जो दो गवाह हैं, यूं कहो वो जो जैद था जो सफर पे जा रहा है वो है असल जी। शाहिद असल है, और ये जो बाद में दो गवाह इसने बनाए हैं और ये काजी के पास जाकर अब गवाही देंगे, ये है शाहिद फरा, ये उसके फरा हैं यानी शाख हैं, तो ये शाहिद फरा हैं, तो ये शाहिद फरा जो हैं काजी के पास जाकर फिर गवाही देंगे और यूं कहेंगे कि मैं गवाही देता हूं कि जैद के सामने ये बैअ वाला मामला हुआ था, जैद वो जो गवाह असल है, वो जो शाहिद असल है, ये शाहिद फरा काजी के सामने जाकर कहेगा मैं गवाही देता हूं कि जैद के सामने यह वाला बैअ का मामला हुआ था और जैद ने मुझे अपनी गवाही पर गवाह बनाया है, तो मैं इस बात की गवाही देता हूं जी। जैद ने मुझे अपनी गवाही पर गवाह बनाया था तो मैं अब इस बात की गवाही देता हूं कि जैद के सामने यह बैअ वाला मामला हुआ था, तो इसको कहते हैं शहादत अला शहादत, और शरीयत ने इसकी इजाजत दी है लेकिन जरूरत और हाजत की वजह से, बगैर जरूरत और हाजत के नहीं। जब एक गवाह खुद आ सकता है काजी के पास तो उसको इजाजत नहीं है वो किसी और को अपनी गवाही पर गवाह बना दे। और फिर इसमें यह भी याद रखना कि शहादत अला शहादत और मामलात में तो जायज है, हुदूद के मसले में जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि हुदूद तो अदना शुबे से भी साकित हो जाती हैं, और जब मसलन एक आदमी को मैं एक बात कहता हूं, मैं एक आदमी को अपना गवाह बनाता हूं, तो जाहिर सी बात है गवाह जाकर काजी के सामने जब गवाही देगा तो वो बेआईन ही मेरे अल्फाज तो नहीं दोहरा सकता, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी बेशी हो जाएगी और उसकी वजह से गवाही में शुबा आ जाता है। तवज्जो है, जब कलाम एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ मुंतकिल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी आ जाती है, दूसरा शख्स जितनी मर्जी एहतियात कर ले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है, खुद उसे भी पता नहीं चलता। तो लिहाजा हुदूद के मसले में गवाही पर गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब कलाम एक आदमी से दूसरे आदमी की तरह मुंतकिल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तगैयुर और तबद्दुल आ जाता है जिसकी वजह से शुबा आ गया और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। और नीस ये भी याद रखना कि जिस तरह हुदूद के मसले में शहादत अल शहादत जायज नहीं है, इसी तरह किसास के मसले में भी शहादत अल शहादत जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि हुदूद भी शुबे की वजह से साकित हो जाती हैं और किसास भी शुबे की वजह से साकित हो जाता है, लिहाजा हुदूद और किसास के मसले में शहादत अल शहादत जायज नहीं है। अब सूरत मसला यह कि जिना का मामला था, चार गवाहों ने काजी के पास आकर गवाही देनी है, लेकिन वो चारों मसलन आज हज पर जा रहे हैं या वो चारों बीमार हैं, तो उन्होंने अपनी गवाही पर गवाह बना दिए, हर एक ने अपनी गवाही पर दो दो गवाह बना दिए, हर एक ने अपनी गवाही पर दो दो गवाह बना दिए, अब ये आठ गवाह जाएंगे और काजी के पास जाकर गवाही देंगे भाई, तो क्या यह गवाही कबूल की जाएगी? मैंने आपको बतला दिया कि नहीं, हुदूद के मसले में गवाही पर गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वह इन शहीदा अरबातुन अला शहादती अरबातिन अला रजुलिन बिज़िना, और अगर चार गवाहों ने गवाही दी अला शहादती अरबातिन चार आदमियों की गवाही पर, बल्कि यहां यह सूरत बनाए चार गवाह हैं जिना के, वो चारों जो है वो हज पर जा रहे हैं, तो अब हर एक ने अपनी गवाही पर चार गवाह बना दिए, हर एक ने अपनी गवाही पर चार गवाह बना दिए, तो पहले चार थे अब कितने हो गए गवाह? 16। एक सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है कि ये जो शाहिदे असल हैं चार, एक ने भी इन्हीं चारों को शाहिदे फरा बनाया, दूसरे शाहिदे असल ने भी इन्हीं चारों को शाहिदे फरा बनाया, तीसरे ने भी इन्हीं चारों को शाहिदे फरा बनाया, चौथे ने भी इन्हीं चारों को शाहिदे फरा बनाया, तो अब चार गवाहों ने आकर शहादत अला शहादत दी काजी के सामने। तो कहते हैं वह इन शहीदा अरबातुन अला शहादती अरबातीन, और अगर चार गवाहों ने गवाही दी चार आदमियों की गवाही पर अला रजुलिन बिज़िना, किसी आदमी के खिलाफ जिना पर, लम युहद्दा, तो उस आदमी को हद नहीं लगाई जाएगी, लिमा फीहा मिन ज़ियादती शुबहती, इसलिए क्योंकि शहादत अला शहादत में एक जायद शुबा है, एक जायद चीज है, और वो क्या है? शुबा। असल की गवाही में तो शुबा नहीं था, लेकिन फरा की गवाही में शुबा आ गया। तो कहते हैं लिमा फीहा मिन ज़ियादती शुबहती, इसलिए क्योंकि फरा की शहादत में एक जायद शुबा है, वला जरूरत इला तहम्मुलिहा, और कोई जरूरत भी नहीं है इस शहादत के तहम्मुल की, यहां पर शहादत के तहम्मुल की कोई जरूरत भी नहीं है। भाई ये जो शहादत अला शहादत है, इसकी तो शरीयत ने इजाजत दी है जरूरत की वजह से, और यहां हुदूद का मसला है, तो यहां कोई जरूरत नहीं है शहादत अला शहादत की, तो क्योंकि हुदूद को साबित करने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि हुदूद को तो टालने की कोशिश की जाती है, लिहाजा यहां कोई जरूरत नहीं है शहादत अला शहादत की, इसलिए उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वला जरूरत इला तहम्मुलिहा, और कोई जरूरत भी नहीं है इस शहादत के तहम्मुल की, क्योंकि हुदूद को तो टालने की कोशिश की जाती है, न के साबित करने की। आगे देखिए, फइन जा अल अव्वलून फशहिदू अलल मुआयनति फी ज़ालिकल मकानी लम युहद्द अयज़न। सूरत यह कि चार गवाह काजी के पास आए और उन्होंने कहा हम शहादत अला शहादत देते हैं, यही चार गवाह जो पीछे मसला गुजरा, जो फरा हैं, असल गवाह नहीं आए बल्कि फरा आ गए, यानी शहादत अला शहादत दे रहे हैं काजी के पास, और काजी को बताया कि हम शहादत अला शहादत दे रहे हैं, तो काजी उनकी गवाही रद्द कर देगा। अब शाहिद असल को पता चला तो फिर वो खुद ही आ गए, वो किसी ना किसी तरह खुद ही आ गए उजर से निकल कर किसी तरह, तो क्या अब इनकी गवाही कबूल की जाएगी? कहते हैं नहीं, वो जो शहादत फरा की गवाही काजी ने रद्द कर दी थी वो इन्हीं की तो गवाही थी, वो इन्हीं की तो गवाही थी, गोया यूं कहो इनकी गवाही एक दफा रद्द हो चुकी है, और जब एक दफा इनकी गवाही रद्द हो गई है तो अब दोबारा कबूल नहीं की जाएगी। याद रखो ये हुदूद में है, क्योंकि हुदूद का मसला बड़ा नाजुक है, लिहाजा यहां पर एक दफा शहादत रद्द कर दी है, अगरचे शाहिद फरा की गवाही रद्द की है, और फिर शाहिद असल आ गया तो शाहिद असल की गवाही अब कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि शाहिद फरा भी इसी के दर्जे में था, और जब शाहिद फरा को रद्द किया था तो गोया शाहिद असल को भी रद्द कर दिया, जबकि और मामलात में गवाही कबूल की जाएगी, काजी के पास शहादत फरा आई और काजी ने शाहिद फरा की गवाही को रद्द कर दिया, फिर शाहिद असल आ गए तो शाहिद असल की गवाही को काजी कबूल करेगा भाई, अगर माल वगैरह और चीजों के अंदर गवाही की जरूरत थी भाई, लेकिन हुदूद के मसले में एक दफा जब शाहिद फरा की गवाही रद्द हो गई तो शाहिद असल की गवाही को भी अब कबूल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फइन जा अल अव्वलूना, तो अगर वो पहले गवाह आ गए यानी वो जो शुहूद असल हैं, तो कहते हैं फइन जा अल अव्वलूना, अगर वो पहले गवाह आ गए यानी वो जो शाहिद असल थे वो आ गए, फशहिदू अलल मुआयनति फी जालिकल मकानी, उन्होंने गवाही दे दी मुशाहदे की, मुआयना का क्या माना? मुशाहदा। फशहिदू, उन्होंने गवाही दी अलल मुआयनति फी जालिकल मकानी, उसी जगह के अंदर जिना के मुशाहदे की, किस जगह पर? जीना हुआ था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो कहते हैं फशहिदू अलल मुआयनति फी जालिकल मकानी, तो उन्होंने उसी जगह के अंदर जीना के मुशाहिदे की गवाही दी। लम युहद ऐजन, तो फिर भी उस आदमी को हद नहीं लगाई जाएगी। माना भाई साहिब हिदायत वजाहत फरमा रहे हैं कि मतन में आया फशहिदू अलल मुआयनति फी जालिकल मकानी, इसका क्या माना है तो बतलाना ये चाहते हैं, यानी शाहिद असल आ गए और उन्होंने बेआईन ही उसी जिना की गवाही दी, उसी जगह में हुआ था यानी उसी जिना की गवाही दी। तो कहते हैं मा ना हो कि इमाम मोहम्मद रहमला के कौल का माना यह है कि शहीदू अला जाली का जीना भी आई नहीं, कि उन पहलों ने भी आई नहीं उसी जीना पर गवाही दी, तो यह गवाही कबूल नहीं की जाएगी, हद साबित नहीं होगी। ले अन शहादत हम कद रुद्दत मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि ये जो अव्वल थे इनकी गवाही तहकीक रद्द की जा चुकी है। मिन वजहिन बाज एतबार से बे रद्द शहादत फुरूई, फुरू की गवाही को रद्द करते हुए फी आई निहाद हिल हाद सती, हादिसा का मामला है वाकया भाई मामला, ये जो जिना का मामला था। बिरद शहादत फुरूई फी आई निहाद हिल हादिसती, आयन इसी मामले के अंदर फुरू की गवाही को रद्द करते हुए। उसूल की गवाही अब कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि बेआईन ही इस मसले के अंदर इनकी एक गवाही एक दफा रद्द हो चुकी है फुरू की गवाही को रद्द करके। फुरू की गवाही को रद्द करना भी तो दरअसल उसूल की गवाही को ही रद्द करना था भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं अन्न शहादत हम कद रुद्दत मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि ये उसूल की जो गवाही है इसको रद्द किया जा चुका है। मिन वजहिन बाज एतबार से बिरद शहादत फुरूई, फुरू की गवाही को रद्द करते हुए। फी आईन हाद हिल हादिसती, आयन इसी वाकये के अंदर। इद हम कायमून मकाम हम, इसलिए क्योंकि वो जो फुरू थे वो इन्हीं उसूल के कायम मकाम थे। फिल अम्र व तहमीली, हुक्म में और शहादत के जिम्मेदार बनाने में। अमर का माना है हुक्म देना भाई, शुहूदे असल ने हुक्म दिया था शुहूदे फरा को कि गवाह हो जाओ, तो हुक्म भी दिया था और उनको गवाही उन पर लाद दी थी यानी उनको जिम्मेदार बना दिया था। हम्मला युहम्मिलु तहमील का माना है दूसरे पर कोई चीज लाद देना, दूसरे के ऊपर कोई चीज डाल देना, दूसरे को किसी चीज का जिम्मेदार बना देना। तो शुहूदे असल जो हैं इन्होंने ही हुक्म दिया था कि हमारी गवाही पर गवाह बन जाओ और इन्होंने ही उन पर तहमील की थी यानी उनको जिम्मेदार बनाया था, तो वो शुहूदे फरा इन्हीं शुहूदे असल के कायम मकाम थे और उनकी गवाही रद्द हो चुकी, तो गोया शुहूदे असल की गवाही भी रद्द हो चुकी। तो कहते हैं इज हम कायमून मकाम हम, इसलिए क्योंकि वो फुरू जो थे वो इन्हीं उसूल के कायम मकाम थे। फिल अम्र हुक्म देने में, व तहमील और जिम्मेदार बनाने में, कि इन्होंने ही हुक्म दिया था और इन्होंने ही जिम्मेदार बनाया था। वला युहद शुहूद, भाई फिर गवाहों पर हद जारी होनी चाहिए, उन्होंने जिना की तोहमत लगाई है। कहते हैं वला युहद शुहूद, और गवाहों को हद नहीं लगाई जाएगी। लिअन्ना अददहुम मुतकामिलुन, इसलिए क्योंकि उनका अदद तो पूरा है, वो तो चार गवाह हैं भाई, तो शहादत का निसाब पूरा है। वम्तिना उल हद अनिल मशहूद अलैही लिनौई शुबहतिन, और मशहूद अलै, मशहूद अलै कौन, जिसके खिलाफ जिना की गवाही दी है। मशहूद अलै से हद इसलिए साकित हुई कि एक किस्म का शुबा आ गया था। तो कहते हैं वम्तना उल हद अनिल मशहूद अलैही, और मशहूद अलै से जो हद मुमतने हो गई। लिनौई शुबहतिन, ये एक नौ के शुबहे की वजह से, एक नौ के शुबहे, और वो शुबा क्या कि बात जब एक शख्स से दूसरे शख्स की तरह मुंतकिल होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तगैर व तबद्दुल आ जाता है, तो लिहाजा फुरू की गवाही में तो शुबा आ गया और उसूल की गवाही में भी शुबा आ गया क्योंकि एक दफा उनकी गवाही रद्द हो चुकी है भाई, तो दोनों के अंदर शुबा मौजूद है, लिहाजा अब मशहूद अलै पर हद जारी नहीं की जा सकती। तो कहते हैं वम्तना उल हद अनिल मशहूद अलैही, और मशहूद अलै से हद का रुक जाना। लिनौई शुबहतिन, ये एक किस्म के शुबे की वजह से है। वह यकाफियतुन लिदर इल हदी, और ये शुबा काफी है हद के दूर करने के लिए। ला लीजाबी ही, ये हद के वाजिब करने के लिए काफी नहीं, इसकी वजह से हद कजफ गवाहों पर साबित नहीं हो सकती। इस शुबे की वजह से हद जिना तो साकित हो जाएगी लेकिन इस शुबे की वजह से गवाहों पर हद कजब साबित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। यह माना है कि वह यकाफियत लिदर इल हदी और यह शुबा हद को खत्म करने के लिए काफी है, लाली ईजाब ही लेकिन हद को वाजिब करने के लिए काफी नहीं। आगे देखिए वह ईदा शहीदा अरबातुन अला रजुलिम बि ज़िना फरुजिमा फकुल्लमा रजा वाहिदुन हुद्दर राजउ वहदहु वगरिमा रुबअद्दियती। भाई याद रखो अब गवाही से रुजू का बयान आ गया। ये बाब हम पढ़ रहे हैं बाबु शहादत अला ज़िना व रुजू अनहा। ये बाब है शहादत अला ज़िना के बयान में और उसे रुजू करने के बयान में। अभी तक जो मसाइल चल रहे थे वो शहादत के थे, अब रुजू अनी शहादत के मसाइल जिक्र करने लगे हैं साहिब हिदाया। याद रखो यहां पर तीन किस्म के गवाह होंगे भाई जिना के अंदर। कुछ को शुहूदे जिना कहेंगे, कुछ को शुहूदे तज़किया कहेंगे, कुछ को शुहूदे एहसान कहेंगे। शुहूदे एहसान, शुहूदे जिना वो चार गवाह जो जिना की गवाही दे रहे हैं और फिर हम इन चार गवाहों का पता करवाएंगे कि ये आदिल हैं या नहीं, आदिल हैं या नहीं। और ये लाजिम है हुदूद के मसले में तादील करवाई जाती है गवाहों की, तो काजी इनके जानने वाले आदिल लोगों को खत लिखेगा कि ये लोग आदिल हैं या नहीं। इसको कहते हैं तज़किया। इसको क्या कहते हैं? तज़किया। तज़किया का माना है किसी को पाक और साफ बतलाना, यानी ये शख्स आदिल है, गुनाहों में मुबतला नहीं है, फासिक नहीं है, तो इसको कहते हैं तज़किया। तो काजी जो है आदिल लोगों को खुफिया तौर पर खत लिखेगा और वो फिर उसको जवाब देंगे भाई। तो ये है तज़किया। तो ये जो तज़किया करने वाले हैं ये हैं शुहूदे तज़किया। ये क्या है? शुहूदे तज़किया। एक हो गए शुहूदे ज़िना जो काजी के पास आकर गवाही देंगे, एक शुहूदे तज़किया जो इन गवाहों की तादील करेंगे, इनको आदिल बतलाएंगे, और फिर उसके बाद यह भी देखा जाएगा ये जिसके बारे में जिना की गवाही दी जा रही है ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, यानी मोहसन है या गैर मोहसन। अगर मोहसन है तो रजम किया जाएगा, अगर गैर मोहसन है तो कोड़े लगाए जाएंगे। तो इस मोहसन होने पर भी बाज़ औक़ात गवाही आती है तो उनको शुहूदे एहसान कहेंगे, उनको शुहूदे एहसान कहेंगे जो मोहसन होने की गवाही देते हैं। तो कितनी किस्म के गवाह हो गए यहां? तीन किस्म के। कुछ क्या हैं? शुहूदे जिना, कुछ शुहूदे तज़किया और कुछ शुहूदे एहसान। याद रखो शुहूदे एहसान अगर रुजू कर लें तो फिर उन पर जमान नहीं, उन पर जमान नहीं। लेकिन अगर शुहूदे तज़किया या शुहूदे जिना रुजू कर लें तो फिर इन पर जमान आएगा अगर इनकी वजह से दूसरे की जान गई है। बात समझ में आ गई? देखिए भाई कहते हैं वईदा शहीदा अरबातुन अला रजुलिम बिज़्ज़िना और जब चार गवाहों ने गवाही दे दी एक आदमी के खिलाफ जिना की फरुजीमत उस आदमी को रजम कर दिया गया फकुल्लमा रजा वाहिदुन हुद्दर राजउ वहदहु वगरिमा रुबअद्दियती। भाई याद रखो इधर एक और ज़ाब्ता समझ लीजिए भाई। देखिए यहां गवाह गवाही देने के लिए आ गए जिना के अंदर, तो पहले ये गवाही देंगे फिर उसके बाद काजी फैसला करेगा और उसके बाद हद को नाफिज किया जाएगा। और आप पढ़ चुके हैं हद को नाफिज करना ये भी कजा ही का हिस्सा है, ये काजी के फैसले का हिस्सा है। तो अगर गवाह गवाही देने आए और काजी के फैसला लिखने से पहले ये इनमें से किसी ने रुजू कर लिया तो फिर सारों को हद लगाई जाएगी, क्योंकि ये मालूम हुआ ये जिना की तोहमत लगा रहे थे, यहां गवाह चार पूरे ही नहीं हैं। और अगर काजी ने फैसला दे दिया इनकी गवाही सुनकर और अभी हद नहीं लगी थी इससे पहले किसी गवाह ने रुजू कर लिया तो भी इन चारों को हद लगाई जाएगी। काजी के फैसले के बाद हद के नाफिज करने से पहले किसी ने अगर रुजू कर लिया तो इसको भी यूं समझा जाएगा जैसे काजी के फैसले से पहले ही रुजू कर लिया, और काजी के फैसले से पहले अगर गवाह रुजू कर लें तो फिर निसाब शहादत कम हो गया तो सबको हद कजफ लगाई जाएगी। और अगर हद को नाफिज करने के बाद कोई रुजू करता है आप याद रखो इनकी गवाही के साथ काजी का फैसला मिल चुका है, हद लग गई उसके बाद कोई रुजो करता है तो सिर्फ उस रुजो करने वाले को हद कजफ लगाई जाएगी, बाकियों पर हद कजफ नहीं आएगी, क्योंकि बाकियों की गवाही काजी के फैसले के साथ मिलकर मजबूत हो गई। तवज्जो है। तो क्या सूरत हुई अगर काजी के फैसले से पहले कोई एक रुजो कर ले तो तमाम गवाहों पर हद आएगी अगर निसाब शहादत कम हो गया, और अगर काजी के फैसले के बाद रुजो किया है लेकिन अभी हद कायम नहीं हुई तो यह भी इसी तरह है जैसे काजी के फैसले से पहले ही रुजो किया, तो इसमें भी सब पर हद आएगी अगर गवाह चार से कम हो गए। भाई बात सूरतों में अगर गवाह ज्यादा हैं एक आध के रुजो करने से फर्क नहीं पड़ता, मसलन पांच गवाह आए थे तो अब एक इनमें से रुजो कर ले तो फिर भी चार गवाह तो मौजूद हैं, तो लिहाजा चारों को हद नहीं लगेगी क्योंकि शहादत का निसाब पूरा है। तो लिहाजा अगर गवाहों में से कोई एक रुजो कर ले और शहादत का निसाब कम हो जाए तो चाहे काजी के फैसले से पहले रुजो करे चाहे काजी के फैसले के बाद रुजो करे लेकिन हद के कायम होने से पहले रुजो करे तो सबको हद लगाई जाएगी अगर निसाब शहादत कम हो गया, और अगर काजी के फैसले के बाद रुजो करते हैं तो फिर इस सूरत में सिर्फ जो रुजो करेगा उसी को हद उसी पर हद जारी होगी। तो कहते हैं वह ईदा शहीदा अरबातुन अला रजुलिन बिज़्ज़िना, और अगर चार गवाहों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी, फरुजिमा उस आदमी को रजम कर दिया गया, फकुल्लमा रजा वाहिदुन, बस जब भी इनमें से कोई एक रुजो करेगा इन गवाहों में से कोई एक जब भी रुजो करेगा, खुद दर राजउ वहदहु, तो उस अकेले रुजो करने वाले को हद लगाई जाएगी, वह गरीमा रुबअद दियती, और वह जामिन होगा रुबअ दियत का। भाई इन चार गवाहों की वजह से एक आदमी की जान चली गई है तो लिहाजा एक ने रुजो कर लिया तो सिर्फ इस एक को हद लगेगी, बाकी को हद नहीं, क्योंकि बाकियों की गवाही के साथ काजी का फैसला मिल चुका है, काजी के फैसले ने उनकी गवाही को मजबूत कर दिया है, लिहाजा उनको हद नहीं लगेगी। हां जो जो रुजो करता जाएगा उसको हद लगती जाएगी। तो अगर सिर्फ एक ने रुजो किया तो सिर्फ उस एक को हद लगेगी, और नीज एक जान गई है और एक जान ना हक तौर पर गई है तो पूरी दियत वाजिब होगी, लेकिन पूरी दियत में इस एक गवाह का हिस्सा कितना है? चौथा हिस्सा। चार गवाहों की वजह से जान गई है तो एक गवाह पर रुबए दियत का जमान भी आ जाएगा, रुबए दियत दियत का चौथा हिस्सा इसको बतौर जमान के भी देना पड़ेगा। तो यह माना है खुद दर राज वहदहु, तो अकेले रुजो करने वाले को हद लगाई जाएगी, वगरिमा रुबा दियती, और वो दियत के चौथे हिस्से का जामिन होगा। अम्मल गरामतु, भाई जमान क्यों आएगा अब उसकी वजह बतला रहे हैं, कहते हैं अम्मल गरामतु, तो जुर्माना जो है फली अन्नहु बकिया, इसलिए क्योंकि बाकी है, मैं अब काबी शहादती ही सलासतु अरबा इल हकी, क्यों बाकी है उनकी गवाही की वजह से हक का तीन चौथाई। भाई तीन गवाहों ने तो अभी भी रुजू नहीं किया तो तीन चौथाई हक अभी भी बाकी है, एक चौथाई हक इस आदमी पर आ जाएगा और तीन चौथाई हक वाले अभी भी बाकी हैं तो वो जमान नहीं आएगा। तो ये माना है फली अन्नहु बकिया मैं यब काबी शहादती ही सलासतु अरबा इल हकी, इसलिए क्योंकि बाकी हैं वो लोग जिनकी गवाही की वजह से तीन चौथाई हक अभी भी बाकी है। फली अन्नहु बकिया मैं यब काबी शहादती ही सलासतु अरबा इल हकी, इसलिए क्योंकि बाकी हैं वो अफराद कि जिनकी गवाही की वजह से तीन चौथाई हक अभी भी बाकी है, तो सिर्फ एक चौथाई जमान जो है वो इस गवाह पर आएगा। भाई फयकूनुल फाइतु बि शहादति राजिई रुबुउल हक्की, फयकूनुल फाइतु, बस वो हक जो फौत हुआ है बि शहादति राजिई, रुजो करने वाले की शहादत की वजह से रुबुउल हक्की, वो हक का चौथा हिस्सा है, तीन चौथाई हक तो अभी भी बाकी है, उन गवाहों ने अभी रुजू नहीं किया, तो फयकून उल फाइतु बि शहादति राजिई रुबुउल हक्की, बस वो जो फौत हुआ है रुजू करने वाले की शहादत की वजह से वो हक का चौथा हिस्सा है। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह, और इमाम शाफिई रहमहुल्लाह तआला रहमतन वासिअ फरमाते हैं यजिबुल कत्ल दूनल माल, वो फरमाते माल नहीं वाजिब होगा, इस गवाह को भी कत्ल करेंगे इसकी वजह से एक जान गई है, तो कहते हैं यजिबुल कत्लु दून अल माल, कि कत्ल वाजिब होगा ना के माल, बिना अन अला असलही फी शुहूद अल किसासी, बिना बर उनके जाबते के किसास के गवाहों में। भाई याद रखो, अगर अगर दो गवाहों ने गवाही दे दी कि हमारे सामने जैद ने फुला को तलवार से कत्ल किया था, कातिल का पता नहीं चल रहा था लेकिन दो गवाहों ने आकर गवाही दे दी, तो जैद से अब किसास लिया जाएगा और जैद को भी किसास में कत्ल कर दिया जाएगा। बाद में इन गवाहों में से एक या दोनों रुजू कर लेते हैं काजी के पास आकर के, काजी साहब हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला था, तो इस सूरत में इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों को कत्ल किया जाएगा, इनकी वजह से जैद की जान गई है, जबकि हमारे नजदीक इन्होंने कोई कत्ल तो नहीं किया अपने हाथ से, इन्होंने सिर्फ गवाही दी है, लिहाजा इन पर जमान आएगा, इनको दियत देना पड़ेगी, किसास में इनको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो हमारे नजदीक किसास के गवाह रुजू कर लें तो सिर्फ उन पर दियत आती है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उनको कत्ल किया जाता है। तो कहते हैं बिना अन अला असलही फी शुहूद अल किसासी, बवजह उस जाबते के जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का है किसास के गवाहों के बारे में, वसन उबयिनहु फी दियात इंशा अल्लाह ताला, और अन करीब हम उसको किताबु दियात के अंदर इंशा अल्लाह ताला बयान करेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जो जाबता है किसास के गवाहों के बारे में कि उनको भी कत्ल किया जाएगा अगर वो रुजू करते हैं, तो साहिब हिदाया फरमाते हैं हम उसको किताबुद्दियात में बयान करेंगे। याद रखो, याद रखो, यहां शारहीन हजरात फरमाते हैं कि साहिब हिदाया ने यह वादा तो फरमाया लेकिन इसको पूरा नहीं किया। साहिब हिदाया ने क्या फरमाया कि किसास के गवाह अगर रुजू कर लें तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जाबता है कि उनको कत्ल किया जाएगा, और यह हम कहां बयान करेंगे, किताबुद्दियात में। तो शारहीन फरमाते हैं कि साहिब हिदाया ने वादा तो फरमाया लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन याद रखो शारहीन की यह बात दुरुस्त नहीं है। भाई साहिब हिदाया ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जाबता भी जिक्र फरमाया और उनकी दलील भी जिक्र फरमाई है, अलबत्ता किताबुद्दियात के अंदर नहीं, किताबु शहादत के अंदर उन्होंने जिक्र फरमाई है। किताबु शहादत के अंदर जहां वो गवाही से रुजू का जिक्र फरमाते हैं तो वहां उन्होंने जिक्र फरमाया है इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक अगर किसास के गवाह रुजू कर लें तो उनको कत्ल किया जाएगा। तो मालूम हुआ साहिब हिदाया ने अपने वादा पूरा किया है। भाई अलबत्ता साहिब हिदाया से या किसी लिखने वाले से यहां तसामुह हो गया, किताबु शहादत के बजाय किताबुद्दियात लिख दी, चूंकि इस मसले का ताल्लुक शहादत से भी है और दियत से भी है, भाई दोनों से ताल्लुक है, तो बहरहाल साहिब हिदाया ने अपना वादा पूरा फरमाया है भाई। और ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह का यह जाबता भी जिक्र फरमाया है और उनकी दलील भी जिक्र फरमाई है किताबु शहादत के अंदर। भाई आगे देखिए, वह अम्मल हद फ मजहब उलमा इन सलासा, हमारे नजदीक ये जिस एक गवाह ने रुजू किया है इसको हद लगाई जाएगी। तो कहते हैं वह अम्मल हद, तो हद जो है फ मजहब उलमा इन सलासती रहिमहुमुल्लाह, ये हमारे तीन उलमा का मजहब है, यानी हमारे अइम्मा सलासा का मजहब है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और साहिबैन, इनका यह मजहब है कि हद आएगी। वकाल जुफर रहमहुल्लाहु ला युहद्दु, और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला युहद्दु, के हद नहीं लगाई जाएगी, रुजू करने वाले को हद नहीं लगाई जाएगी। क्यों, क्या वजह है, तो उनकी दलील अब आगे आ रही है। इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं लिअन्नहु इनकान अर्राजु, इधर देखिए भाई, इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये शख्स जिसने गवाही से रुजू किया है इसको या तो आप काजिफुल हय करार देंगे या काजिफुल मय्यत करार देंगे। यानी इधर देखिए, एक सूरत यह है इस गवाह ने रुजू किया है, इस गवाह ने, मालूम हुआ जिस वक्त इसने काजी के पास गवाही दी थी तो उस वक्त ही इसने जिना की तोहमत लगाई थी, गवाही नहीं थी जिना की तोहमत थी, ये खुद कह रहा है मैंने झूठ बोला था, तो उस वक्त से ही तोहमत थी और उस वक्त तो वो मरजूम जिंदा था, तो ये काजिफुल हाई हुआ, जिंदा आदमी पर तोहमत लगाने वाला, ये जिंदा आदमी पर तोहमत लगाने वाला हुआ। और याद रखो ये जो हद कजफ है इसके अंदर बरासत जारी नहीं होती। एक आदमी ने दूसरे आदमी पर जिना का इल्जाम लगाया, वो काजी के पास चला गया, काजी साहब इसने मेरे ऊपर जिना का इल्जाम लगाया है, इस पर हद कजफ जारी की जाए। लेकिन उससे पहले ही वो मखजूफ मर गया जिस पर इल्जाम लगा था, वो आदमी मर गया। तो याद रखो हद कजफ साकित हो जाएगी, क्योंकि हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती, वसूल करने वाला ही ना रहा तो हद कजफ भी साकित हो गई। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस शख्स ने, गवाह ने अभी रुजू किया है, तो यहां दो सूरतें हैं, या तो आप इसको फिलहाल तोहमत लगाने वाला करार देंगे और इस वक्त तो वो मरजू मर चुका है, मरने के बाद रुजू कर रहा है ना, तो इस वक्त तो ये काजिफुल मैयत हुआ, मरने वाले पर इसने तोहमत लगाई है, और अगर आप इसकी गवाही को ही तोहमत करार दे देते हैं जो इसने काजी के पास शुरू में गवाही दी थी, अगर आप उसी को कजफ करार दे देते हैं तो वो कजफे हई हुआ, जिंदा आदमी पर तोहमत। तो चाहे आप इसको काजिफुल हई बनाएं, चाहे आप इसको काजिफुल मैयत बनाएं, दोनों सूरतों के अंदर हद नहीं आती इस आदमी पर। अगर आप इसको काजिफुल हई बनाते हैं कि जब इसने गवाही दी थी उस वक्त ही इसने जिना का इल्जाम लगाया था, तो फिर वो जिंदा तो अब मर चुका है और हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं हो सकती, लिहाजा आप इस पर हद कजफ जारी नहीं कर सकते। और अगर आप इसको काजिफुल मैयत बनाते हैं कि अभी इस वक्त से ये तोहमत लगा रहा है और वो आदमी मर चुका है, तो फिर भी इस पर हद कजफ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये एक ऐसे आदमी पर जिना की तोहमत लगा रहा है जो मरजूम बेहुक्मिल काजी है, जो मरजूम है, जिसको रजम किया गया है बेहुक्मिल काजी, काजी के फैसले से। ये किसी और आदमी पर जिना की तोहमत नहीं लगा रहा, बल्कि मरजूम बेहुक्मिल काजी पर जिना की तोहमत लगा रहा है। बात समझ में आ गई? किस पर? मरजूम बेहुक्मिल काजी पर यह जिना की तोहमत लगा रहा है। याद रखो मरजूम बेहुक्मिल काजी पर अगर कोई शख्स जिना की तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ नहीं आती। यह मरजूम बेहुक्मिल काजी है, और मरजूम बेहुक्मिल काजी तो वो है जिसे काजी ने जिना की वजह से रजम करवाया है। मरजूम बेहुक्मिल काजी तो वो है जिसे काजी ने जिना की वजह से रजम करवाया है, तो वो जिना से पाक दामन ना रहा, मालूम हुआ उसने जिना किया था, तो लिहाजा वो मोहसन नहीं है। और गैर मोहसन पर कोई जिना की तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ वाजिब नहीं होती भाई। इसलिए मरजूम भी हुक्मिल काजी पर कोई जिना की तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ जारी नहीं की जा सकती भाई। ये तो गवाह है, इसने रुजू किया है, इससे कतई नजर कोई और अलग आदमी है, उसने इस मरजूम को जानी कह दिया, उसने मरजूम को जानी कह दिया कि वो जिनाकार था। उस मरजूम के बेटे जो हैं इस आदमी को उठाकर काजी के पास ले आए, काजी साहब इसने हमारे बाप को जानी कहा है और आपके सामने एक गवाह ने रुजू किया था, मालूम हुआ हमारे बाप को नाहक रजम किया गया है, लिहाजा इस आदमी ने हमारे बाप को जानी कहा है, तो इस पर हद कजफ जारी कीजिए। तो याद रखो इस काजिफ पर हद कजफ जारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसने जिना की तोहमत मरजूम बेहुक्मिल काजी पर लगाई है। किस पर? वो जो आदमी जिसको रजम किया गया था उसको वैसे ही रजम किया था या काजी के फैसले से? तो काजी के फैसले से जब रजम किया गया, काजी के पास तो आकर एक गवाह ने रुजू कर लिया है, लेकिन आम लोगों की नजर में तो वो मरजूम बेहुक्मिल काजी ही है भाई। तवज्जो है? तो लिहाजा जब एक शख्स मरजूम बेहुक्मिल काजी को जानी कहे तो उस पर हद कजफ जारी नहीं हो सकती। तो यहां पर भी इमाम जुफर की दलील चल रही है। इमाम जुफर फरमाते हैं ये जो गवाह जिसने गवाही से रुजू कर लिया है, आप इसको काजिफुल हई करार देंगे या काजिफुल मैयत करार देंगे? अगर आप इसको काजिफुल हई करार देते हैं तब भी हद साबित नहीं होती, क्योंकि वो जिंदा तो अब मर चुका है और हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती। और अगर आप इसको, जिस गवाह ने रुजू किया है, आप इसको काजिफुल मैयत करार देते हैं कि इसने एक मरे हुए आदमी पर जिना का इल्जाम लगाया है, तो फिर भी इस रुजू करने वाले गवाह पर हद नहीं आ सकती, क्योंकि यह जिना का इल्जाम मरजूम बेहुक्मिल काजी पर लगा रहा है। किस पर? मरजूम बेहुक्मिल काजी पर लगा रहा है, और उसकी वजह से शुबा आ जाता है। क्या आ जाता है? शुबा। भाई देखो, गवाह ने रुजू कर लिया, गवाह ने रुजू कर लिया, जब रुजू कर लिया मालूम हुआ काजी से फैसले में गलती हुई थी, जब काजी से फैसले में गलती हुई थी वो जो शख्स जो मरजूम हो गया वो तो मोहसन था, और काजी का जब फैसला गलत है मालूम हुआ उसका एहसान काजी के फैसले से भी उसका मोहसन होना खत्म नहीं। काजी ने बेशक रजम करवा दिया लेकिन उसके मोहसन होने में कोई खराबी नहीं आई, मालूम हुआ उसने ये फेले जिना नहीं किया था, वो जिना से पाक दामन था, वो मोहसन था। तो इमाम जुफर की दलील चल रही है कि अगर आप इसको काजिफ मैयत करार देते हैं तो फिर भी ये ऐसे मुर्दे पर जिना का इल्जाम लगाने वाला है जो मरजूम बिल हुक्मिल काजी है, और मरजूम बिल हुक्मिल काजी होने की वजह से अगरचे उसका मोहसन होना तो साकित नहीं हुआ, उसका मोहसन होना तो साकित तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उसमें शुबा तो आ गया, भाई काजी के फैसले से रजम किया गया था, जब काजी के फैसले से रजम किया गया है मालूम हो पाकदामन नहीं है, शुबा आता है या नहीं। जब पाकदामन नहीं है जिना करने वाला है तो जिना करने वाले को अगर कोई जानी कहे उस पर तो हद नहीं आती भाई। तो इमाम जुफर फरमाते हैं आप चाहे इस रुजू करने वाले को चाहे काजिफुल हय करार दें चाहे काजिफुल मैयत करार दें, किसी सूरत के अंदर इस पर हद साबित नहीं होती। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इमाम जुफर फरमाते हैं ला युहद्दू, इसको हद नहीं लगाई जाएगी, ले अन्नहु इनकान अर्राजू काजिफा हय्यिन, इसलिए क्योंकि रुजू करने वाला अगर वो काजिफ हय है फकत बतला बिल मौती, तो तहकीक हद बातिल हो गई बिल मौती उस मकजूफ के मरने की वजह से, वह इनकान काजिफा मैतिन, और अगर ये रुजू करने वाला मैयत पर तोहमत लगाने वाला है फहुआ मरजूम उन बि हुक्मिल काजी, तो वह मैयत जो है वो तो मरजूम बि हुक्मिल काजी है, फयूरिसु जालिका शुभतन, तो ये एक शुबा पैदा कर देता है, लिहाजा इस रुजू करने वाले पर हद नहीं आ सकती। वलना अब हमारी दलील आ गई, इधर देखिए हमारी दलील समझ लीजिए, हम कहते हैं कि हम इसको काजिफुल हय करार नहीं देते बल्कि काजिफ मैयत करार देते हैं, हम इसको काजिफ मैयत करार देते हैं क्योंकि इस वक्त उसके मरने के बाद यह रुजू कर रहा है, तो गोया इस वक्त यह जिना की तोहमत लगा रहा है, तो यह काजिफुल मैयत हुआ। और आपने कहा कि काजिफुल मैयत है तो यह तोहमत लगा रहा है मरजूम बे हुक्मिल काजी पर, तो हम कहते हैं कि जब इसने रुजू कर लिया तो इसकी जो गवाही थी वो बातिल हो गई, फसख हो गई इसकी गवाही, वो जो इसने माजी में गवाही दी थी वो गवाही क्या हो गई, फसख। जब वो फसख हो गई तो उसी गवाही पर तो काजी के फैसले की बुनियाद थी, तो काजी का फैसला भी इसके हक में फसख हो गया, गोया इस रुजू करने वाले के हक में वो शख्स जो है मरजूम बे हुक्मिल काजी न रहा, क्योंकि इस रुजू करने वाला का यह ख्याल है कि उसको नाहक रजम किया गया है। इस रुजू करने वाले का क्या ख्याल है, मेरी गवाही गलत थी, जब मेरी गवाही गलत थी तो काजी का फैसला भी गलत था, जब काजी का फैसला गलत था तो मालूम हो वो शख्स हकीकत में मरजूम बे हुक्मिल काजी नहीं है, तो लिहाजा इस रुजू करने वाले के साथ अपने गुमान के मुताबिक सुलूक किया जाएगा, और इसके गुमान में तो वो जो मरने वाला है वो मरजूम बे हुक्मिल काजी नहीं, क्योंकि इसका अपना क्या गुमान है, मैंने गवाही गलत दी थी लिहाजा काजी का फैसला भी गलत था, जब काजी का फैसला ही गलत था तो वह मरजूम बे हुक्मिल काजी ना रहा, क्योंकि हुक्म काजी ही नहीं है तो मरजूम बे हुक्मिल काजी कहां से हो गया जी। जब वो क्या कहता है, मैंने जब गलत गवाही दी तो काजी का फैसला भी गलत, जब काजी का फैसला गलत तो मालूम हुआ मरजूम बे हुक्मिल काजी न रहा, जब वो मरजूम बे हुक्मिल काजी ना रहा तो अब इस आदमी को हद लगाई जाएगी, और सिर्फ इसके हक में वह मरजूम बे हुक्मिल काजी नहीं है, बाकी गवाहों ने रुजू नहीं किया उनके हक में और आम लोगों के हक में वो अभी भी मरजूम बे हुक्मिल काजी है, लेकिन खुद इस गवाह ने रुजू कर लिया है, जब इसने रुजू किया तो इसकी गवाही फसख हो गई, जब इसकी गवाही फसख हो गई तो उसी गवाही पर तो काजी के फैसले की बुनियाद थी, तो काजी का फैसला फसख हो गया, जब काजी का फैसला खत्म हो गया तो इस गवाह के हक में वह मरजूम बे हुक्मिल काजी न रहा, जब इसके हक में मरजूम बे हुक्मिल काजी ना रहा तो किसी किस्म का शुबा भी ना आया। इमाम जुफर तो यही फरमाते थे ना कि मरजूम बे हुक्मिल काजी होने की वजह से शुबा आ गया, लिहाजा इसको हद नहीं लगाई जाएगी, हम कहते हैं नहीं, खुद इसके अपने गुमान के मुताबिक अब मरजूम बे हुक्मिल काजी नहीं है, लिहाजा किसी किस्म का शुबा नहीं, जब शुबा नहीं तो इसको हद लगाई जाएगी। तो कहते हैं वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्ना शहादत इन्नमा तनकलिबु कज़फन बिर्रुजूई, कि गवाही जो है वो पलट कर कज़फ बन जाती है रुजू करने की वजह से। लिअन्न बिही तुफ़सखु शहादतुहु, इसलिए क्योंकि रुजू की वजह से इसकी शहादत फसख हो जाती है। फजुइला लिलहाली कज़फन लिलमैति, फजुइला लिलहाली, यहां लिलहाल बमाने फिल हाल है, यानी हम इसको काजिफ हय करार नहीं देते बल्कि काजिफ मैयत करार देते हैं। तो यह माना है फजुइला लिलहाल कज़फन लिलमैति, तो इसको फिलहाल कज़फ लिलमैत करार दिया जाएगा। वक़द फसखतिल हुज्जतु, और हुज्जत यानी गवाही तो फसख हो गई क्योंकि इसने रुजू कर लिया। फयनफसिखु मा यब्तनी अलैहि, तो वो काजी का फैसला भी फसख हो गया जिसकी बुनियाद इस गवाही पर थी। वह हुवल क़ज़ा फी हक़िही, और वह काजी का फैसला था फी हक़िही, इस रुजू करने वाले के हक में, इसके हक में काजी का फैसला फसख हुआ है, बाकियों के हक में काजी का फैसला फसख नहीं। जब इसके हक में काजी का फैसला फसख हो गया तो मालूम हुआ हुक्म काजी नहीं है, तो वो आदमी भी मरजूम बे हुक्म काजी नहीं है। भाई हुक्म काजी होता तो वो मरजूम बे हुक्म काजी भी होता, लेकिन इसके अपने ख्याल में ये हुक्म काजी ही नहीं, और जब हुक्म काजी नहीं तो वो मरजूम बे हुक्म काजी भी नहीं। फला यूरिसु शुबहता, लिहाजा ये शुबा पैदा नहीं करता, इसकी वजह से कोई शुबा पैदा नहीं होता काजिफ मैयत करार देने से। बेखिलाफ इमा इदा कदफहु गैरुहु, बखिलाफ इसके कि जब उस मरजूम को कोई और जो है उस पर तोहमत लगाए। मैंने बताया एक गवाह ने तो रुजू कर लिया लेकिन इस गवाह से कतई नजर, कोई और आवाम में से कोई और जो है उस शख्स को जिसको रजम किया गया था उसको जानी कहे, और जानी का बेटा इसको काजी के पास ले आए, तो फिर भी उस आदमी पर हद कजफ नहीं आएगी क्योंकि वो जिना का इल्जाम लगा रहा है मरजूम बेहुक्मिल काजी पर। भाई तो ये मरजूम बेहुक्मिल काजी है, और मरजूम बेहुक्मिल काजी तो वो है जिसे काजी ने जिना की वजह से रजम करवाया है। मरजूम बेहुक्मिल काजी तो वो है जिसे काजी ने जिना की वजह से रजम करवाया है, तो वो जिना से पाक दामन ना रहा, मालूम हुआ उसने जिना किया था, तो लिहाजा वो मोहसन नहीं है। और गैर मोहसन पर कोई जिना की तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ वाजिब नहीं होती। भाई इसलिए मरजूम भी हुक्मिल काजी पर कोई जिना की तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ जारी नहीं की जा सकती। भाई तो कहते हैं बेखिलाफ इमा इदा कदफहु गैरुहु, बखिलाफ इसके कि उस मरजूम को अगर कोई और आदमी जो है वो जिना की तोहमत लगाए। लिअन्नहु गैरु मुहसनिन फी हक गैरिही, इसलिए क्योंकि ये मरजूम जो है ये तो गैर मोहसन है दूसरे के हक में, बाकियों के नजदीक तो यह मरजूम बे हुक्मिल काजी है, और मरजूम बे हुक्मिल काजी तो वो होता है जो गैर मोहसन, उसका तो मोहसन होना खत्म हो जाता है। भाई कहते हैं लिअन्नहु गैरु मुहसनिन फी हक़ गैरिही, इसलिए क्योंकि ये गैर मोहसन है दूसरे के हक में। लिक़ियामिल क़ज़ा फी हक़िही, इसलिए क्योंकि उस गैर के हक में तो काजी का फैसला कायम है, काजी का फैसला अभी भी कायम है। रुजू करने वाले के हक में काजी का फैसला फसख हुआ था लेकिन गैरों के हक में तो काजी का फैसला कायम है, तो लिहाजा कोई और अगर उस मरजूम बे हुक्म काजी पर जिना का इल्जाम लगाएगा तो उस पर हद कजफ जारी नहीं की जा सकती। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बिहादा वल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।